मैं समझता हूं लगभग 3 महीने की अनुपस्थिति के पश्चात फिर से प्रचार मंच पर वापस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गिलहरियों का कठिन समय था, इसलिए मेरा भी वो ये ढीला पड़ गया। यद्यपि अब और आप फिर से सेवा में प्रवेश करना चाहते हैं और इस आने वाले सप्ताह में आरंभ करने की आशा करते हैं, इस आने वाले बुधवार रात्रि में यही इस आराधनालय में एक बेदारी। और यदि परमेश्वर ने चाहा, मेरे पास एक प्रकार का प्रभु ने मुझसे भिन्न रीति से प्रतिज्ञा की है और एक नए प्रकार की सेवकाई, और यदि वो ऐसा करने में प्रसन्न होता है, मैं इसे आरंभ करने की आशा करता हूँ। इसे आने वाले सप्ताह में नए प्रकार की सेवकाई यहाँ इस आराधनालय में सबसे पहले। और फिर मेरे पास निर्धारित सभाएं नहीं है, परंतु केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस आने वाली जनवरी में। और फिर भाई ऑसबर्न संयुक्त सभा के लिए बुला रहे हैं, जिसकी मैंने उनसे कुछ समय पहले तुलसा में प्रतिज्ञा की है, परंतु उसके थोड़े समय पश्चात, परंतु अभी हम उसके लिए पूरे तरह से आश्वस्त नहीं हैं। भाई जेफरी, निश्चय ही ये बहुत अच्छा था कि मैंने आपसे यहाँ पीछे हाथ मिलाया और आपके लड़के को गाना गाते हुए और आपको बजाते हुए सुना। मुझे इस प्रकार के पिता और पुत्र अच्छे लगते हैं। क्या आप ये पसंद नहीं करते? जिस राह में बालक को जाना चाहिए उसी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। ये ठीक बात है श्री गुंथर, आप जानते हैं कि ये ठीक बात है, आप दोनों जानते हैं। बालक का पालन पोषण उसी प्रकार से करें जिधर उसे जाना चाहिए। जब वो बड़ा होगा तो वो छोड़कर नहीं जाएगा, और ये सत्य है। हो सकता है किसी समय वो इससे भटक जाए, परंतु ये उससे अलग नहीं होगा। देखा, ये सदा उसके साथ स्थिर रहेगा। ये आरंभिक शिक्षा है और जो कुछ भी उसे करने के लिए उसे तैयार किया गया है, ये अवश्य ही उसके साथ बना रहेगा। अब ये मैं भाई जेफरी से वहाँ बाहर मिला और मैंने कहा, भाई जेफरी, मैंने सोचा आप जानते हैं कि मैं किसी भी आने वाले भाई से मिलकर सदा प्रसन्न होता हूँ, परंतु मिलने आने वाले भाई के लिए इस प्रकार की रात्रि, लोगों के लिए केवल यही रात्रि आराधनालय में आने की है कि प्रार्थना, ये बेदारी, यही वो रात्रि है। हम आज की रात और कल की प्रातः और कल रात्रि को लेना चाहते हैं, केवल उस पर जो हम यहाँ आराधनालय में विश्वास करते हैं कि इसे फिर से देखें। हमारा कुछ थोड़ा सा विचित्र विश्वास है, बहुत ही विचित्र, परंतु जो भी है हम इसे बाइबल में पाते हैं, वे यहाँ ठीक प्रतीत होते हैं। और यदि यहाँ कोई अपरिचित भाई या बहन हो जो किसी विशेष नामधारी कलीसिया से संबंध रखते हों या यानी असहमत हों और आज रात्रि यहाँ पर बैठे हों, हम चाहते हैं कि आप जान जाएं कि आपका पूरी रीति से स्वागत है। देखिए, आपका वैसे ही स्वागत है जितना हो सकता है, परंतु अब मैं आशा करता हूँ और हम इसको इतना साधारण बना देते हैं, इसलिए यदि आपको लगे कि आप इससे सहमत नहीं है तो अच्छा, आप ऐसा करें जैसा मैं करता हूँ जब मैं चेरी की मुठ्ठी को खाता हूँ। और जब मैं चेरी की मुठ्ठी खा रहा हूँ, जो कि मुझे पसंद है, मैं सदा जब मैं मुठ्ठी खाता हूँ, यदि बीज आ जाता है तो मैं मुठ्ठी को नहीं फेंकता, मैं बीज को फेंक देता हूँ और खाता रहता हूँ। इसी प्रकार से या जैसे चिकन खा रहा होता हूँ। अब आप सब चिकन खाना पसंद करते हैं, और जब आपके मुंह में हड्डी आती है तो आप छोड़ नहीं देते, आप हड्डी को चारों ओर से घुमाकर और चिकन खाते रहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से आप आज रात्रि करते हैं जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप केवल जब आप कुछ खाते हैं आप कहते हैं, अब मैं केवल नहीं, मैं यहाँ केवल जैसे एक छोटी सी कलीसिया की शिक्षा के लिए अगले 3 सभाओं के लिए बैठा हूँ। वे एक प्रकार से जो वे विश्वास करते हैं उसे दोहरा रहे हैं और इसे देख रहे हैं, और केवल एक ही विधि है कि आप इसका व्यक्ति से विश्वास करवा सकते हैं, परिश्रम से उसके घर तब तक जाते रहें जब तक वे इसे न जान जाएंगे। यही बात है, ये ठीक बात है, यही केवल विधि है कि आप इसे जड़ दें। जैसे कि मेरा एक मित्र श्री वुड्स, जिसके साथ में था, यदि आप एक कील आदि ठोकते हैं और सारे तख्ते ढीले हवा के झोंके से उसे जल्दी ही नीचे गिरा देगा, परंतु आप इसे अंदर तक बैठा दें और इसे मजबूती से जड़ दें। इसलिए अब यदि मैं इसे इन स्थानों में वास्तव में साफ साफ कर दूं, और आप जो आने वाले आज रात्रि यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को बाहर करने का यत्न नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यत्न कर रहा हूँ कि इस कलीसिया को घर पहुँचाऊँ जो हम विश्वास करते हैं। सब जो इसे अब वास्तव में भरी प्रकार से समझते हैं, आमीन कहें। ठीक है, ये ठीक बात है, और मैं इसे अपने हाथ धोता हूँ और तब वे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आदि आदि, ताकि बाद में यदि वे इसे मालूम करना चाहें कि वास्तव में हम किस पर खड़े हैं और किस आधार पर हम खड़े हैं, ये रिकॉर्डिंग इसे बताएगी। और तब हम इसे अक्सर करते हैं क्योंकि नए नए लोग आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और अब इस योग्य नहीं है कि कलीसिया की सारी शिक्षाओं को देखें, परंतु उनमें से कुछ जिन पर हम बोलना चाहते हैं। और अब बुधवार रात्रि यद्यपि आरंभ हो, अब सोमवार और मंगलवार मैं प्रार्थना करने के लिए अलग जा रहा हूं कि चंगाई सभा के लिए तैयार हो जाऊं। और आप टेलीफोनों पर आ सकते हैं या आप जो भी चाहें और आप जिसे चाहें इस आने वाली बेदारी में लाएं और उन्हें बताएं कि अब जल्दबाजी में ना आए, ये कहने को ना आए, अच्छा अब मैं अंदर जा रहा हूँ और आज रात्रि प्रार्थना करवाऊंगा और कल रात्रि, ये सब आप ये ना करें। आप भीतर आकर और कुछ समय के लिए सुने, क्योंकि हम अपना समय लेना चाह रहे हैं और उस वचन को इतना समीप रखते हैं कि शैतान के पास थोड़ा सा भी स्थान ना हो कि हलचल करे। और तब जब आप अपने विश्वास को इस छोर तक आने दें, जब तक आप विश्वास करना आरंभ ना करें, तब अपने उपचेतना को कार्य करने दें, तब परमेश्वर का विश्वास इसका पक्ष लेगा, तब आप इस पर सीधे जाएंगे, समझे? क्योंकि आपका विश्वास बहुत कुछ नहीं करेगा, आपकी उपचेतना को उस दिशा में चलना है जिसमें कि आपका विश्वास चल रहा है, तब परमेश्वर का विश्वास इसके पीछे चलता है और इसकी पुष्टि करता है, देखा? परंतु यदि ये आपका विश्वास है, ओ हाँ मैंने अभी अभी इसे किया है, तो यहाँ तक कि आपकी उपचेतना वापस पलटकर ये कह रही है, मुझे आश्चर्य है कि यदि ये मुझ पर कार्य करेगा, ये तब उस समय नहीं करेगा, समझे? इसलिए हम इसे एक वास्तविक चंगाई सभा चाहते हैं। और इसके पहले मैं किसी को इन कमरों में लूं और आदि आदि, चंगाई के लिए यानी इन नई सभाओं में मैं चाहता हूं कि वे इसे वास्तव में समझ लें कि वे यहां किस लिए आ रहे हैं। इसलिए स्मरण रखें और आए और हमसे मिलें और आपको पाकर हमें प्रसन्नता होगी। अब स्मरण रखें, प्रातः हम कलीसिया की शिक्षा को जारी रखना जा रहे हैं और कल रात्रि उसी प्रकार से। अब आने के लिए आपका स्वागत है और कोई भी आ सकता है, किसी को भी देखकर हम सदा प्रसन्न होते हैं। परंतु अब इस रात्रि यहाँ इस आराधनालय के लोगों को घर की ओर अगुवाई की गई है जो इस शिक्षा में बड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर कार्य क्षेत्रों में सुसमाचार सुनाने के क्षेत्रों में हम केवल मूल पवित्र वचन के फैलाने की शिक्षा को लेंगे, परंतु यहाँ आराधनालय में हमारे अपने विचार हैं और अपने विश्वास हैं एक कलीसियाई रूप में, और वही आज रात्रि हम ले रहे हैं। अब इसके पहले हम उसके आशीषित वचन को खोलें, क्या हम अपने सिरों को प्रार्थना के क्षणों में झुका सकते हैं? सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, आप जो इसके पहले संसार ने पहले परमाणु पर घूमना आरंभ किया, आप परमेश्वर थे, आप जरा भी नहीं बदले, और जब इसे थामने के लिए कोई परमाणु नहीं है और इसे थामे रहने के लिए कोई संसार नहीं है, आप फिर भी परमेश्वर हैं, आप सदा के लिए हैं और सदा से हैं, आप परमेश्वर हैं, आपके दिनों का आरंभ कभी नहीं हुआ ना ही जीवन का अंत, आप सदा रहेंगे। और पिता, क्योंकि आप अनंत हैं और हम सीमित हैं, तब हम आपके दिव्य अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, ये अनुभव करते हुए कि ये हमारी आत्मा को अनंतता में समा जाना है, इस समय के तत्व में से अनंतता में, इसलिए प्रभु हम यहाँ अपने उद्धार को जांचने के लिए हैं, ये देखने को कि हम आपके वचन की दृष्टि में कैसे खड़े हैं, और ये देखने हेतु कि हम अपने अनुभव में कैसे स्थित हैं, क्या हम ऐसे जीवित हैं जो तुझे पसंद है, और क्या हमारी आत्मा आपके आत्मा के साथ गवाही देती है, और क्या हमारी शिक्षा इस बाइबल के साथ गवाही देती है। और पिता, होने पाए कि हम दोनों को समीप से आने वाली तीन सभाओं में परखें, प्रभु इसे प्रदान करें, यहाँ पास्टर को आशीषित करें, डीकन, ट्रस्टी और सब गैर पादरी वर्ग लोग जो यहाँ पर इस आराधनालय में आते हैं, प्रभु यहाँ अपने दिनों के आरंभ से यहाँ बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता या वे कहाँ से आते हैं, परंतु मैं निश्चित हूँ कि आप सबके विषय में जानते हैं। आज रात्रि हम यहाँ एक उद्देश्य के लिए हैं, प्रभु की लिखित वचन के चारों ओर संगति करें और हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा दें, ताकि हम शांति से बैठ सकें और गंभीरता के साथ और परमेश्वर के भय में और उसके वचन से अपने जीवनों को जांचें, प्रभु इसे स्वीकार करें। और प्रभु आज रात्रि भवन में यहाँ मेरे भाई विभिन्न कलीसियाओं के पक्षों से हैं, और प्रभु मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि ये लोग यहाँ पर संगति के लिए हैं। संभव है हम शिक्षा के सिद्धांतों में सहमत ना हो, परंतु उस एक विशेष महान सिद्धांत में हम यह भाई लोग मिलकर सामने खड़े हैं। ओ परमेश्वर, होने पाए इससे हमारी संगति मजबूत हो और हमारा और परमेश्वर के अनुग्रह के बंधन और प्रेम हम पर बहुतायत से ठहरे। जब प्रभु ये अनुभव करते हुए कि ये एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य है करने के लिए, क्योंकि आज रात्रि यहाँ हम एक विचार के अधीन हैं, प्राणों का लक्ष्य जो कि अनंतता से जुड़ा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा वचन में आए और वहाँ पर तैयारी कर और अपनी विधि से हमें व्याख्या दे वो बातें जो उसने हमारे जानने के लिए रखी हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। और जब जब सभाओं का समय समाप्त हो जाए तो होने पाए कि हम दृढ़ कलीसिया के समान जाएं, जैसे कि एक साथ मिले हुए कि अपने हृदयों और अपने उद्देश्यों को एक साथ रखें, अपने स्वर्ग के राज्य के साथ के नागरिक के संग और आगे बढ़ें, जैसे पहले कभी नहीं बढ़े। प्रभु, मैं आपको यहाँ कलीसिया की उपस्थिति और लोगों की उपस्थिति में जो यहाँ पर हैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे कई सप्ताहों का अच्छा विश्राम दिया है। मैं आपकी उपस्थिति के कारण और आपकी आशीष के कारण आज रात्रि बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। और ओ परमेश्वर, हम यहाँ अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा भाई जो समुद्र पार जा रहा है, वहाँ उन अंधियारे गंदे देशों में जहाँ पर इसका जीवन एक निशाने के समान रखा है। और ओ प्रभु, हमारे भाई जेफरी को जैसे कि वो वहाँ जाता है, और उसका पुत्र और उसकी पत्नी को आशीषित करें और उसे महान बढ़त दें। होने पाए कि वो उस अंधकार में ढेर सारे छेद कर दे जब तक कि सुसमाचार का उजियाला चमकने और फैलने न लगे। पिता हमारी सुन, क्योंकि ये विनती प्रभु यीशु तेरे पुत्र के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब आज रात्रि अपनी छोटी स्कॉफील्ड की बाइबल में से पढ़ते हुए, मैंने हाल ही में 25 वर्षों को गुजार दिया है और मैं अब भी इसे पढ़ सकता हूँ, परंतु ये काफी धुंधली हो गई है, इसलिए मैंने पढ़ने का चश्मा ले लिया है जब मैं अध्ययन करता हूँ, और मैं देखूंगा कि आज रात्रि ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये मेरा पहला अवसर है। अब मेरे पास इस प्रकार के विषय हैं कि कलीसिया को होना चाहिए। ओ बहुत सारी चीजें हैं यदि हम इन्हें ले सकें। उनमें से एक है, हम क्यों कलीसिया कहलाते हैं, हम क्यों नामधारी नहीं हैं? हम क्यों विश्वासी के प्राण की अनंत सुरक्षा में विश्वास करते हैं? हम क्यों महिला प्रचारकों को दोषी ठहराते हैं? हम क्यों डूब का बपतिस्मा देते हैं? और क्या कलीसिया पीड़ाओं में से निकलेगी? और यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं। मैं समझता हूँ मेरे पास 15 या 18 हैं अगली कुछ रात्रियों के लिए। इसलिए आज रात्रि मैं सोच रहा हूँ कि आरंभ करूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने मेरे हृदय पर इस विषय के लिए रखा है, क्यों हम एक नामधारी संस्था नहीं हैं? कारण यह है कि अब दूसरे लोगों के विरोध में कुछ नहीं है जो नामधारी में हैं। हमारे पास उनके विरोध में कुछ नहीं है, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों हम कभी भी किसी नामधारी के साथ नहीं गए। मेरा छोटे बैप्टिस्ट कलीसिया में अभिषेक हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, और बैप्टिस्ट अभी हाल तक नामधारी संस्था नहीं था, और अब उन बाकियों के समान नामधारी हो गए हैं। परंतु जिस कारण हम कभी भी नामधारी नहीं हुए हैं, अब हम एक संगठन हैं। हम एक संगठन हैं। यहाँ कचहरी में एक संगठन के समान लिखित है, एक लोगों का झुंड जो कि मसीह की आराधना के लिए संगठित है, परंतु हम नामधारी नहीं हैं। हम पर कोई भी शासन करने नहीं जा रहा है, आप समझे? ये कोई नामधारी नहीं है, ये केवल मसीही विश्वासियों की संगति का संगठन है। लोग यहाँ आराधनालय में आते हैं और ये उनका अपना आराधनालय हो गया है। यदि वे जब तक जीते हैं आना चाहते हैं, वे यहाँ आकर हर बात जिसे हम प्रचार करते हैं उससे असहमत होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अब भी जब तक आप मसीही हैं, आपके पास संगति है और दूसरों के समान सहयोग देते हैं, समझे? यदि मैंने कहा कि मैं पानी के डूब के बपतिस्मे में विश्वास करता हूँ और आप छिड़काव में विश्वास करते हैं और उसी पर बने रहते हैं, हम फिर भी वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि यदि हम दोनों सहमति पर थे। संभव है हम एक समान आंखें मिलाने योग्य नहीं हो, परंतु जहाँ तक आप एक मसीह भाई या बहन हैं, आपका पूरी तरह से स्वागत है। देखा, हरेक का। इसलिए हम कोई नामधारी संस्था नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नामधारी भाईचारे को अलग करती है। उनमें से कुछ कहते हैं, भाई उस बेदारी में से हमें कुछ नहीं लेना देना, वो मेथोडिस्ट की बेदारी है। अरे वो बैप्टिस्ट का है, हमारा कोई, हम मेथोडिस्ट हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई यदि मसीह उसमें है तो हमें उससे हर बात में मतलब है, हमें अपना उसमें रखना है। यदि ये मसीह की देह है जो दुख उठाती है, और आज मैं देश में ये बहुत देखता हूँ कि ये हमारे पास कैसा है। अब मसीह ने कभी भी कोई संगठन नहीं बनाया, कोई नामधारी कलीसिया नहीं बनाई। अब इसमें पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं। अब मैं आपसे कल रात्रि पूछने जा रहा हूँ, यदि आप ये बातें जानना चाहते हैं, एक इतिहास के समान जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ या कुछ दूसरा, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसी पूरी तरह से लूँ। मैं दूसरे विषय पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप इसी विषय पर ही कई सप्ताह चल सकते हैं। परंतु यदि आप उन स्थानों को जानना चाहते हैं कुछ भी, तो मुझसे पूछें और लिखकर मेज पर रख दें, तो मैं लेकर आपके लिए उत्तर दूंगा। अब सबसे पुरानी नामधारी और पहली वर्गीकृत कलीसिया जो कभी रही, वो कैथोलिक कलीसिया है, और ये 300 कुछ में संगठित हुई अंतिम प्रेरित की मृत्यु के पश्चात। ये ठीक बात है। ये आप आरंभ के नीसियन फादर में पाते हैं, और आप ये जोसुफुस के लेखों में पाते हैं, और बहुत सारे महान इतिहासकारों में, समझे? और जहाँ तक किसी कलीसिया कालों में अंतिम प्रेरित की जब तक मृत्यु नहीं हुई और 300 वर्ष प्रेरितों की दूसरी और वहाँ कोई नामधारी कलीसियाएं नहीं थीं, और कैथोलिक कलीसिया का पहला वर्गीकरण था, और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं नामधारी हैं जो कि नामधारी में से निकली है। लूथर पहला सुधार लाया, लूथर के पश्चात ज्विंगली, ज्विंगली के पश्चात कॉल्विन आया, और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे, और वेस्ली की बेदारी तक, और अलेक्जेंडर कैम्बेल, जॉन स्मिथ, और जो भी थे, देखिए आगे तक, और अंतिम अभियान जो हमारे पास अब है, ये पेंतिकोस्तल युग के विभिन्न पक्ष हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने प्रत्येक युग में व्यवहार किया, परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हर बार जब कभी कलीसिया असफल हुई, और जैसे ही उन्होंने वर्गीकरण किया, वे तभी से असफल होना आरंभ हो गए, और जब कभी वे असफल हुए, परमेश्वर ने उस कलीसिया को फिर नहीं उठाया, वो सीधी बीच पर चली गई। अब आप केवल, यदि आप इसके लिए इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हम आपको दे सकते हैं कि कोई कलीसिया कभी भी कलीसियाओं के इतिहास में कभी भी कोई भी नामधारी कभी भी गिरा तो कभी फिर उठा हो, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथर या जो भी हो, जब वे गिरे वे समाप्त हो गए। अब ये ठीक बात है। अब मैंने ये आपको बताया है, बख्तर पहन लीजिए, क्योंकि हम इसे कठिन अनुभव बनाने जा रहे हैं। देखा, कभी कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर आया और एक कलीसिया को संगठित किया। ये आरंभ हो गया। परमेश्वर व्यक्तियों से व्यवहार करता है, नामधारी से नहीं। परमेश्वर ने किसी भी युग में नामधारी से व्यवहार नहीं किया, वो सदा व्यक्ति से व्यवहार करता है। पुराने नियम में उसने एक व्यक्ति से व्यवहार किया, नए नियम में उसने एक व्यक्ति के साथ व्यवहार किया। किसी भी युग में उसने सदा व्यक्तियों से व्यवहार किया और नामधारियों से नहीं। इसलिए यदि परमेश्वर नामधारी में नहीं है तो फिर मेरा उससे एक नामधारी के समान मतलब रखने का क्या लाभ। अब मैं नामधारियों में जो लोग हैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नामधारी स्वयं के विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के लोग सारे नामधारियों में हैं। अब परमेश्वर किसी भी चीज को बिना चेतावनी के घटित होने नहीं देता। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई ऐसी चीज है। अब हमारे पास मामले हैं जो कलीसियाओं से निकलकर आते हैं, जैसा कि हाल ही में लहू और तेल और आदि आदि, और प्रिय ब्रणम आप जानते हैं, चिट्ठी और आदि आदि। परंतु जिस कारण मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ, क्योंकि ये वचन में नहीं है, और यही कारण है कि मैं नामधारी के विरोध में हूँ, क्योंकि ये वचन में नहीं है। इसमें कुछ तो होना चाहिए जिस पर हम अपने विश्वास का आधार बनाएं। यदि हम नामधारी को अपना आधार नहीं बना सकते, हमारे पास परमेश्वर का वचन आधार के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही केवल आधार है, परमेश्वर का वचन। और तब यदि परमेश्वर का वचन नामधारी के विषय में नहीं बोलता परंतु नामधारी के विरुद्ध बोलता है, तो हमें वचन के साथ बोलना चाहिए। चिंता नहीं बिशप क्या, कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, कोई भला व्यक्ति क्या कहता है, कुछ भी क्या कहता है, यदि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो ये गलत है। देखिए, इसे होना ही चाहिए, वचन ही अंतिम होना चाहिए, अंत में परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए। आमीन। अब स्मरण रखें, मैं किसी को गैर मसीही नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझते हैं। नामधारियों में, वहाँ उन नामधारियों में वे लाखों मूल्यवान प्राण हैं जो कि परमेश्वर के बालक हैं, परंतु उनको अलग करना और वर्गीकृत करना, मैं इसके विरोध में हूँ और परमेश्वर का वचन इसके विरोध में है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज देश में ऐसा कोई वाद नहीं है, ऐसा कोई भी वाद देश में नहीं हुआ, परंतु जो उसने आने से पहले बता दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यहाँ इस वचन में, आरंभ से, हमारे आरंभ से अंत तक, ये ठीक परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। और तब मैं ये विश्वास करता हूँ, यदि ये परमेश्वर के वचन में है तो हमें चाहिए ये पहले बताए। और परमेश्वर का वचन एक चेतावनी है। अब आप परमेश्वर के वचन को एक समाचार पत्रिका के समान नहीं पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं, समझे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं मसीह के द्वारा बात कर रहा है। मसीह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि उसने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा रखा है और उन्हें बालकों पर प्रकट करेगा जो सीखेंगे। इसलिए देखिए, कोई विधि कभी नहीं हुई है कि पढ़ाया गया हो, कोई विधि नहीं है कि कभी नामधारी किया गया हो, केवल एक ही मार्ग है कि ठीक हो जाए, वो केवल परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन में हो, और वो अनुभव इस वचन के साथ मेल खाना चाहिए। देखिए, तब आपको मिल गया, समझे। जैसा कि अब हम यहाँ कुछ मिनटों में आ रहे हैं, हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनमें से कुछ पक्के कैल्विनवाद के, कुछ पक्के आर्मेनियंस के, और कुछ विभिन्न प्रकार के लोग हैं। यहाँ सदा कोई मतलब नहीं कि आप कितनी पतली परत काटें, उसके दो पहलू होंगे ही, ये बिल्कुल ठीक बात है, और उन दोनों के पास विवाद करने के सूत्र हैं। परंतु इसकी बात ये है कि इसका सत्य कहाँ पर है, यही जहाँ पर हम आ रहे हैं, जहाँ हम सोचते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आपको इसका सत्य दर्शा सकते हैं। अब हम इसे जरा लें, और यही जहाँ मैंने कुछ कलीसियाओं की शिक्षाओं को लेकर लिखा है, आइए कुछ मिनटों में आप अपनी बाइबलों में से निकालें। अब आप सब लोग और हम प्रकाशित वाक्य पर आएं, पहला अध्याय यानी प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय से आरंभ करें, और आइए अब हम पढ़ें और देखें कि कलीसियाई काल कहाँ आरंभ हुए और किसने इसे आरंभ किया। अब बाइबल हर चीज को पहले से ही चेतावनी देती है, ये वे दिन जिनमें हम रह रहे हैं उसकी चेतावनी पहले से देती है। और अब प्रकाशित वाक्य 17, यदि आप, मैंने कहा 13वां, मेरा अर्थ उससे अर्थ नहीं था, ये वहाँ पर, हम उसे भी कुछ देर बाद लेंगे, ये संयुक्त राज्य की भविष्यवाणी में है। परंतु अब ध्यान पूर्वक सुने, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब स्मरण रखें, ये भेदपूर्ण सुनाई पड़ता है। अब ये कुख्यात स्त्री यदि अब हम इस पर शिक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको पहले मालूम करना होगा कि इन प्रतीकों का क्या अर्थ है। अब बाइबल में एक स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। आप में से कितने ये जानते हैं? हम एक दुल्हन हैं, कलीसिया एक दुल्हन है। इधर आ और मैं तुझे दंड दिखाऊंगा। और अब इस बड़ी वेश्या के लिए एक न्याय की बात बोली गई है, वो अशुद्ध स्त्री जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब स्त्री एक कलीसिया का प्रतीक है और पानी लोगों का प्रतीक है। अब यदि आप ध्यान देंगे 15वें पद को, उसको भी देखें, जबकि आप वहीं पर हैं, 15वां पद उसी अध्याय में। और उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। समझे? अब ये महान कलीसिया, महान स्त्री, अब स्मरण रखें, ये एक कुख्यात स्त्री है। और यदि स्त्री कलीसिया को दर्शाती है और मसीह की कलीसिया एक दुल्हन है, एक पवित्र दुल्हन, तो फिर यहाँ अपवित्र स्त्री है। ये एक अपवित्र होगी जो कि दुल्हन का ढोंग करे। समझे? अब ये क्या करती है? वो ऊपर बैठती है, यानी ऊपर का अर्थ पानियों पर नियंत्रण रखती है। दूसरे शब्दों में उसके पास दूसरे सारे राष्ट्रों और भाषाओं और लोगों के द्वारा उसके पास सामर्थ है। ये स्त्री एक महान व्यक्ति है। अब जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है, क्योंकि पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, धनी पुरुष, महान पुरुष, आप कैसे करेंगे? एक राजा कलीसिया के साथ कैसे व्यभिचार करेगा? ये आत्मिक व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार क्या है? ये एक स्त्री के समान जो अपने पति के साथ सच्ची नहीं है, वो दूसरे पुरुष के साथ रह रही है जबकि उसका पति है। और तब ये कलीसिया मसीह की दुल्हन होने का ढोंग करती है जबकि वो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार कर रही है, अपने अशुद्ध रहने से, अशुद्ध कार्यकलापों से। ओ, ये गहरा है और ये बहुतायत से है। मैं बस वचन से प्रेम करता हूँ। अब ध्यान दें, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। उसकी मदिरा, ये वो जो वो दे रही थी, उसकी प्रेरणा। हम एक कलीसियाएं हैं, हम ही हैं जिसके पास है। समझे? अब इसे अब अपने मस्तिष्क में इसकी कल्पना करें। ठीक है, इसलिए वो ले गया, जैसा कि दूत ने यहुन्ना को बताया, मैं तुझे ये न्याय दिखाऊंगा जो इस महान कलीसिया पर आ रहा है। अब ध्यान दें, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर उस स्त्री को बैठे देखा। बाइबल में लाल राजसी को दर्शाता है, किरमिजी रंग का अर्थ लाल है, और पशु सामर्थ को दर्शाता है। क्या आपने ध्यान दिया? पशु समुद्र में से निकलकर आता है, वो जो प्रकाशित वाक्य 13 में था। और जब आप देखते हैं कि पशु समुद्र में से निकलता है, इसका अर्थ ये सामर्थ लोगों के मध्य में से उठती है। परंतु प्रकाशित वाक्य 13, जब ये मेमना आता है, वो पृथ्वी में से आता है, लोग नहीं, संयुक्त राज्य। परंतु इसके पश्चात उसके दो छोटे सिंह थे, असैनिक और कलीसियाई संबंधी सामर्थ हैं। और तब उसने सामर्थ पाई और अजगर के समान बोला जो उससे पहले था। इसलिए आप केवल इस पर निशान लगा लें, हम इन्हीं चीजों के साथ धार्मिक सताव पर आ रहे हैं जो इन्होंने वर्षों पहले पागान रोम में किए थे, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है। अब ये क्या है? एक पशु पर बैठी है, एक सामर्थ। क्या आपने रिबका पर ध्यान दिया? जब एलियाजार ने उसे पाया, ये सांझ का समय था, और उसने ऊंट को पानी पिलाया, क्योंकि एलियाजार ने कहा, वो कुमारी जो आकर इस ऊंट को पानी पिलाए वही होगी और मुझे पिलाए, प्रभु वही होगी जिसे आपने चुना है कि तेरे दास इसहाक की दुल्हन हो। और जबकि वो प्रार्थना में ही था, रिबका आई और पानी निकाला और उसे पानी दिया और ऊंट को पानी पिलाया। ध्यान दें, ऊंट एक पशु था और वही पशु जिसे वो पानी पिला रही थी वही था जो उसके दूल्हे के पास ले गया इसहाक के। और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसे कलीसिया पानी पिला रही है और आराधना कर रही है वही चीज है जो इसे इस पृथ्वी से लेकर दूल्हे से मिलाएगी। निश्चय ही सांझ में इसहाक बाहर मैदान में था। हम प्रभु से वहाँ महिमा में नहीं मिलते। इफिसियों का 5वां अध्याय उसने कहा हम उससे हवा में मिलेंगे। ओ ये मेथोडिस्टों को चिल्लाने के लिए तैयार करता है। इस पर सोचिए, समझे प्रभु। इसहाक अपने पिता के घर से बाहर निकलकर आता है और बाहर मैदान में था जब उसने रिबका को ऊंट पर आते हुए देखा और उसने उससे पहली दृष्टि में प्रेम किया और ऊंट पर से उतर पड़ी और उससे मिलने को दौड़ी। ये ठीक बात है। वही जहाँ हम प्रभु से मिलते हैं और वही ऊंट जिसे पानी पिलाया गया उसे उसके पति के पास ले गया। और वही सामर्थ कलीसिया जिसकी आराधना कर रही है, जिसे संसार धर्मो उन्माद कह रहा है, जिसकी कलीसिया आराधना कर रही है वही सामर्थ होगी जो कलीसिया को हवा में ले जाएगी कि प्रभु से हवा में मिले। वो पवित्र आत्मा, देखा, यही है। और देखिए रिबका कुंवारी थी और ये स्त्री वेश्या है जिसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए कि सामर्थ क्या है। उस सामर्थ का क्या अर्थ है? वो पशु, वो लाल रंग पर थी। अब ये किस प्रकार का पशु होगा? लाल, ये एक धनी सामर्थ होगी। अब ये किस प्रकार की कलीसिया होने जा रही है? ये एक धनी कलीसिया है और ये एक महान कलीसिया है और ये एक सामर्थी कलीसिया है और ये भीड़ और लोगों को प्रभावित करती है और पृथ्वी के राजाओं ने इसके साथ आत्मिक व्यभिचार किया है और ये पृथ्वी का एक महान पुरुष है। अब हम एक मिनट में मालूम करेंगे कि ये कौन है और इन नामधारियों के विषय में मालूम करेंगे। ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहनी थी, राजसी, और सोने और बहुमूल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अचूत वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके हाथ में क्या है? उसकी शिक्षा जो कि वो लोगों के लिए पकड़े हुए है। हम कलीसिया हैं, हम ये हैं। उसने पृथ्वी के राजाओं को अपने साथ इस प्रकार मतवाला कर दिया। हम ये हैं, हम महान सामर्थ हैं। हमने हर राष्ट्र को समेट लिया है। हम यहाँ महानतम कलीसिया हैं। आओ हमारे में से पियो, यहाँ थोड़ा सा उंडे लो, आप इसे लो, आप इसे लो, यहाँ है, ये देखा। और उसके हाथ में एक प्याला था, देखिए। और ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थे, सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अब मित्रों, हम रोजाना का समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर का अनंत और धन्य वचन पढ़ रहे हैं। सारे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वचन बना रहेगा। ये ठीक बात है। और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, एक नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब यहाँ कुछ समय पहले मैंने सोचता कि यहाँ कलीसिया में, परंतु मैंने एक विषय प्रचार किया था, दीवार पर हस्तलेख और बाबुल की ऐतिहासिक समझ देता है। अब हर एक वाद जो कभी उभरा, प्रत्येक वाद और प्रत्येक धर्म जो आज संसार में है, उत्पत्ति में आरंभ हुआ। अब यदि आप हिस्लोप का 2 बेबिलोन्स लेंगे, यदि आप इसे इतिहास में देखेंगे या उन कुछ अच्छी पुस्तकों में, आप प्रत्येक वाद को जो आप ढूंढना चाहते हैं पाएंगे। मैं थोड़ी देर में आपको वापस महिला प्रचारकों पर ले जाने वाला हूँ, देखिए, और दिखाऊंगा। आप वही हैं जहाँ से आरंभ हुए हैं, पीछे उत्पत्ति में, और इन विभिन्न बातों पर किस प्रकार से ये उत्पत्ति में से बाहर निकल कर आए हैं। उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ। कितने जानते हैं कि ये ठीक बात है? उत्पत्ति आरंभ है, इसलिए हर चीज का आरंभ है। जब मैं पेड़ की ओर देखता हूँ, मैं लगभग 2 या 3 महीने पहले जंगल में था, मैंने एक बहुत ही सुंदर वृक्ष देखा। मैं देखता हूँ ये नीचे जाता है और उसके स्थान पर दूसरा निकलता है, निरंतर जीवन, और मैं इस पर सोचता हूँ, परंतु उस वृक्ष का कहीं आरंभ है? उसका आरंभ तो होना ही है। और एक ही विधि है कि वो वृक्ष कहलाए, यानी बलूत या बीज या पॉपुलर या इकताल या ये जो कुछ भी था, उसके पीछे कोई सिद्ध बुद्धि होनी चाहिए। या यदि केवल एक होता, एक बलूत वृक्ष होता, तो संसार में सब बलूत वृक्ष होते। परंतु किसी महान सिद्ध बुद्धि ने इसे क्रम में रखा है। उसका पवित्र नाम धन्य हो। वही है जिसने चांद और सितारों को इस सौर परिवार में रखा है। वो हर चीज को एक व्यवस्था में रखता है और वो अपनी कलीसिया को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करेगा। वो जैसा चाहेगा उसे घुमाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण या ये जो कुछ भी है। जब हम अपने मस्तिष्क में से इन नामधारी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और स्वयं को पूरी तरह से कलवरी पर डाल देते हैं, वो इसे एक अनुक्रम में व्यवस्थित करेगा। यदि हम एक पेड़ के समान और दूसरी सृष्टि के समान समर्पित होते हैं, आप चांद को कभी ये कहते नहीं सुनेंगे कि मैं आज रात्रि नहीं चमकूंगा, मेरे स्थान में तुम कुछ सितारे चमको। परंतु हम जानते हैं हम भिन्न हैं, आप समझे। अब बाबुल, देखिए बाबुल कैसे प्रकट हुआ। ये बाइबल के पहले भाग में प्रकट होता है, ये बाइबल के मध्य में प्रकट होता है, ये बाइबल के अंत में प्रकट होता है। अब कुछ है, अब ये निमरूद के साथ आरंभ होता है। निमरूद ने इसे शिनार की घाटी में स्थापित किया, ठीक दजला और फरात नदी के बीच, और फरात इसके बीच से होकर बहती है। और कैसे वो हर सड़क उस सारे देश की सीधी बाबुल से होकर निकलती है, और उसका प्रत्येक फाटक लगभग 200 फीट चौड़ा है। वे फाटक पीतल के बने हैं। और जब आप बाबुल नगर के अंदर जाएंगे तो हर सड़क सिंहासन की ओर जाती है। अब आज आप रोम जा सकते हैं और हर सड़क रोम की ओर जाएगी, और वहाँ छोटी कुंवारी मरियम सड़क के हर मोड़ पर बालक मसीह को लिए रोम की ओर इशारा करती हुई बैठी है, समझे। ये बाइबल के आरंभ में और बाइबल के मध्य में और बाइबल के अंत में प्रकट होती है। अब मैं थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए पढ़ देना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी भूमिका मिल जाए, ठीक है। और मैंने एक स्त्री को देखा। जब आप स्त्री को देखें तो कलीसिया को देखें, कलीसिया के लिए सोचें। देखा, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू पीने से मतवाली देखा। अब ये संत शब्द कहाँ से आया? ये संत शब्द पवित्र किए गए लोगों से आया है, पवित्र किए गए लोग, ठीक है। मैंने उसे पवित्र लोगों के लहू पीने से मतवाली देखा। अब यदि ये स्त्री कलीसिया है तो ये संतों को सता रही है, और ये महानतम कलीसिया है। इसके पास समस्त संसार में सामर्थ है। वो बहुत से पानियों पर है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। अच्छा, तो ये कौन है? एक प्रकार का भेद। अब आत्मा जा रहा है। आप जानते हैं कलीसिया में 9 प्रकार के वरदान हैं, बुद्धि और एक को समझ और एक को चंगाई और एक आदि आदि के लिए। यीशु के गवाहों के लहू से ऐसे प्रतीत होता है कि वे चिंता नहीं करते कि यीशु ने क्या कहा, ये केवल वो जो कलीसिया ने कहा। ये ठीक बात है और ये भी ठीक है। और जब मैंने उसे देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया, मैं बहुत ही चकित हो गया। ये उसके विषय में ये आश्चर्यजनक बात थी। मैं कैसे आश्चर्यचकित हुआ कि वो स्त्री। अब मैं यहुन्ना का स्थान लेकर और इसे थोड़ा खोलना चाहता हूँ। देखा, यहुन्ना ने कहा वहाँ वो बैठती है, वो एक मसीह कलीसिया के रूप को धरती है। उसके पास सारे संसार का धन है, पृथ्वी के राजा उसके चरणों पर हैं। वो धनी और आकर्षक चीज है। और वो कैसे यीशु के गवाहों के लहू से मतवाली है? वो कैसे संतों को सता सकती है? वो लोगों को मसीह के लिए शहीद होने के लिए कैसे मार सकती है, और फिर भी स्वयं मसीह होने का दावा कर रही है, एक मसीही कलीसिया। अब ध्यान दें, उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है, जिसके साथ सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। अब ये यहाँ एक साधारण पाठ है, आप इसे पकड़ें, ये बहुत सरल होगा। जो पशु तूने देखा, ये पहले तो था पर अब नहीं है, और अथा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। अब यहाँ पर चकोटी लेनी है इसलिए ये यहाँ पर है। उसने कहा अब ध्यान दें ताकि जब सब केवल थोड़े से ही नहीं परंतु वे सब जो पृथ्वी पर रहते हैं अचंभा करेंगे, वे सारे अचंभा करेंगे, सारा संसार इस स्त्री के विषय में अचंभा करेगा। केवल एक ही झुंड होगा जो इस विषय में अचंभा नहीं करेगा, वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब मैं इसको जितना यहाँ निचोड़ सकूं, क्योंकि हम कुछ ही मिनटों में इसमें जा रहे हैं, समझे। मेमने के जीवन की पुस्तक में उनके नाम कब लिखे गए, कब से, जब उन्होंने अंतिम बेदारी में हिस्सा लिया, जिस रात्रि वे वेदी पर गए, जिस रात्रि उन्होंने कलीसिया में सम्मिलित हुए। मैं आपको आघात पहुंचाने का यत्न नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल ने कहा कि उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में पृथ्वी के रचने से पहले लिखे गए। बिल्कुल ठीक बात है। जब परमेश्वर ने आरंभ में देखा कि वो अपने पुत्र को भेजेगा और वो पापियों के स्थान को लेगा, जब परमेश्वर के पुत्र का लहू बहाया गया था, बाइबल ने कहा उसका लहू जगत की उत्पत्ति से पहले बहाया गया। कितने जानते हैं कि बाइबल ये कहती है कि मसीह का लहू जगत की उत्पत्ति से पहले बहाया गया। जब लहू बहाया गया तो उसकी देह का प्रत्येक सदस्य उसका नाम लहू से जगत की उत्पत्ति के समय मेमने की पुस्तक में लिखा गया। जो कि आप इतने भयभीत थे, ओ भाई ये द्वारों को खोल देता है क्या नहीं। अच्छा अब हम इसे यहाँ पढ़ें और देखें कि यदि ये ठीक कहता है। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा किया, मैं विश्वास करता हूँ कि आठवां पद है। और जो पशु तूने देखा, ठीक है ये रहा, जो पशु तूने देखा ये पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकल कर, अब हम इस पर वापस आ रहे हैं, परंतु मैं इसे दूसरे वाले को लेना चाहता हूँ क्योंकि हम इस पर आ रहे हैं, और विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, एक झुंड पृथ्वी पर होगा। दूसरे शब्दों में वे धोखा खाने जा रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है, और वहाँ केवल एक झुंड है जिसने धोखा नहीं खाया, और वो वही है जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। हम उसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे। अब ध्यान दें, वो स्त्री, वो कलीसिया, वो बाबुल का भेद थी। हम देखते हैं वो निम्रोद के द्वारा प्रकट होती है। निम्रोद का उद्देश्य क्या था? निम्रोद ने एक नगर की स्थापना की और दूसरे सब नगरों से इसके लिए कर वसूल किया। क्या हम आज इस प्रकार की बात देख सकते हैं? क्या आज ऐसा कोई स्थान है, क्या कोई कलीसिया है जो जिसकी प्रभुता संसार के प्रत्येक देश पर है? निश्चय ही। क्या आज कोई स्थान है जो प्रत्येक राष्ट्र से कर लेता है? क्या कोई स्थान है? आइए आगे चलें और इस बाकी को पढ़ें थोड़ा सा ताकि आप इसका पूरा चित्र पा सकें। ठीक है, जिसे देखा वो पशु पहले था अब नहीं है और फिर है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। अब कितने जानते हैं कि बुद्धि आत्मा के वरदानों में से एक है? अब वो किस प्रकार के झुंड से अब बात कर रहा है? उसे उससे बात करनी चाहिए, उस झुंड के लोगों से जिसके पास कलीसिया में आत्मा के वरदान कार्य करते हैं, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। अब आप रुकें, इन सारे कलीसियाई कालों में से होते हुए यहाँ खोजें, निकाल रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अंत के दिनों में वे वरदान कैसे कार्य करेंगे। अब हमारे यहाँ चंगाई का वरदान कार्य कर रहा है, ओ ये अच्छा चल रहा है। ओ भाई और दूसरे वरदान हैं, ये तो उनमें से एक है, ये तो एक छोटी सी बात है। यहाँ तो और बड़े बड़े वरदान हैं जो सबसे अच्छे होंगे, पवित्र आत्मा का ज्ञान कि परमेश्वर के वचन को एक साथ मिलाना और कलीसिया को दर्शाना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, बजाय कि किसी को चंगा करना। हम सब चंगे होना चाहते हैं, परंतु इससे अधिक मैं अपनी आत्मा चंगी चाहता हूँ बजाय अपने शरीर की चंगाई के किसी भी समय। ओ प्रभु सुनिए, पवित्र आत्मा पिचमुस पर यहुन्ना के द्वारा बोल रहा है, कहा जिसमें बुद्धि है वो इसे सुने। हम अब यहाँ एक चित्र उभरता हुआ पा रहे हैं। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर सात पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। संसार में केवल एक ही नगर है जो मैं जानता हूँ, दो नगर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनमें सात या अधिक पहाड़ हैं। उनमें से एक सिनसिनाटी है, जो कि सिनसिनाटी की एक काल्पनिक कथा समझी जाती है, कोई दूसरा भेड़िया ये आप जानते हैं और आदि आदि, परंतु जो यहाँ है उसमें उससे अधिक है। परंतु सिनसिनाटी में कोई कलीसिया प्रभुता नहीं करती। समस्त संसार में केवल एक ही स्थान है जहाँ कलीसिया सात पहाड़ों पर है जो समस्त संसार में प्रभुता करती है। मैं हाल ही में वहाँ से आया हूँ, वे सारी बातें, और मैंने वहाँ देखा जहाँ ये कहा, यहाँ जिसमें बुद्धि हो प्रकाशित वाक्य तेरा, ज्ञान इसी में है, जिसके पास बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। मनुष्य का झुंड नहीं, लोगों का झुंड नहीं, परंतु एक मनुष्य, और उसका अंक 666 है। मैंने अक्सर सुना है कि रोम के पोप के सिंहासन पर ये लिखा है, विकेरियस फिलिदी। मुझे प्राय ये आश्चर्य हुआ कि ये सत्य है। एक रेखा खींचो और रोमन अंकों में इसे लिखो, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। मैं वहाँ पोप के त्रिएक ताज जो कि शीशे में बंद था उसके पास खड़ा हुआ। नरक, स्वर्ग और अग्निशोधक की सीमाएं देखा। इसलिए वे बातें, मैं हाल ही में वहाँ से आया हूँ, रोम से आया हूँ, और जानता हूँ कि ये सत्य है। अब हम जानते हैं कि ये चित्रित हो गया, और वे सात राजा भी हैं जो कि उस समय थे, और एक अभी है वही जो अब आया है जो कि सीजर था, और एक को आना था जो कि हिरोद था जो कि दुष्ट था। अब ध्यान दे कि ये कितना सिद्ध है, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। क्या कोई जानता है कि हिरोद ने कितने दिन राज्य किया? 6 महीने। अपनी माँ को लट्ठे से बांधकर सड़क पर घोड़ों से खींचा और नगर को जला दिया और मसीहों पर नाम लगा दिया। और जब वे नगर को जला रहे थे तो वो पहाड़ पर बेला बजा रहा था 6 महीने। और देखिए, और वो पशु, अब ध्यान दे वो कितना दुष्ट था, समझे? अब देखें, और जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप 8वां है, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ, सातवें का स्वभाव, और विनाश में पड़ेगा। कोई भी जानता है कि विनाश का क्या अर्थ है? नरक। और ध्यान दें कि वो कहाँ से निकल कर आया है? नरक से। ये क्या है? अथाह कुंड। कैथोलिक शिक्षा का कोई आधार नहीं है, कैथोलिक शिक्षा के लिए कोई बाइबल नहीं है, कोई बाइबल जैसी चीज नहीं है किसी भी कैथोलिक शिक्षा के लिए, बिल्कुल नहीं। वे इसका दावा नहीं करते। पादरी ने वहाँ कहा, ये छोटा पादरी यहाँ सीक्रेट हार्ट चर्च का यहाँ आया, उसने कहा, ओ वो, मैं उसे मेरी इलिजाबेथ फ्रेजियर के बपतिस्मे के विषय में बता रहा था। उसने कहा, ओ आपने उसे उसी प्रकार बपतिस्मा दिया है जैसे आरंभिक कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा दिया। मैंने कहा, वो कब था? उसने कहा, बाइबल में, आपकी बाइबल में। मैंने कहा, क्या कैथोलिक कलीसिया ने ये बपतिस्मा दिया है? क्या ये कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है? हाँ। मैंने कहा, कैथोलिक कलीसिया के भ्रमातत्व में ये इतना क्यों बदल गया? देखा। उसने कहा, भाई देखिए, आप सब बाइबल पर विश्वास करते हैं, हम कलीसिया का विश्वास करते हैं। देखा, हम चिंता नहीं करते कि बाइबल क्या कहती है, ये तो वो जो कलीसिया कहती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप कभी ऐसे शक्ति परीक्षण पर आए, एक बार आजमाएं, आप देखिए, वे चिंता नहीं करते कि बाइबल क्या कहती है, उससे कोई मतलब नहीं। वे चिंता करते हैं कि कलीसिया क्या कहती है, समझे? परंतु हम चिंता नहीं करते कि कलीसिया क्या कहती है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। इसलिए हम नामधारी कलीसिया नहीं है। अब ध्यान दें, एक मिनट, जरा इसे सुनिए। 5 राजा जो गिर गए थे, 5 राजा, यदि आप इसे इतिहास में चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, और एक है और एक को आना है। अब ध्यान दें, वो पशु, अब वो पशु राजा नहीं था, वो एक था, जो है, जो नहीं है, और अब भी है, और नहीं है, और अभी भी है, और नहीं है। ये क्या है? पोप, लोगों की छूट, एक सामर्थ, एक पशु राज कर रहा है। ये जब पागान रोम का पापल रोम बनने में मत परिवर्तन हुआ, पागान रोम का मत परिवर्तन हुआ था, और तब ये पोपवाद हो गया, जो कि उनके पास राजा के बदले में पोप था, और पोप आत्मिक राजा है। यही कारण है उसे आत्मिक राजा के रूप में ताज पहनाया गया, यीशु मसीह के बदले में होने का दावा किया गया है। अब आप यहाँ पर हैं, अब आप ध्यान दें, और हम कैथोलिक की शिक्षा को बाहर निकालने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के साथ ब्याही गई, ये कैसे अब भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया के मध्य में है। बहुत कुछ है बिल्कुल बाइबल के विरोध में, ठीक विरोध में। अब एक पशु जो था जो नहीं है, अब ध्यान रखें, पृथ्वी पर वे सब धोखा खाएंगे जिनके नाम पृथ्वी के रचे जाने से पहले लिखे नहीं गए। हम देखें, और जो पशु था और नहीं है, 11वां पद, और वो अब 8वां है और वो 7वां और विनाश में पड़ेगा, वो निरंतर रहेगा और जब तक वो अथाह गढ़े में नहीं पड़ेगा अपने समय के अंत में। और 10 सींग जो तूने देखे 10 राजा हैं। अब यहाँ ध्यान दे, यदि आप कुछ विशेष चीजें देखना चाहते हैं, इसे देखें। 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, परंतु घड़ी भर के लिए पशु के साथ राज्य पाया। वे ताज वाले राजा नहीं हैं, वे तानाशाह हैं। देखिए, वे कभी भी ताज पाए हुए राजा नहीं थे, परंतु उन्होंने राजाओं की सी सामर्थ्य एक घड़ी के लिए पाई उस पशु के राज्य में। ये इस थोड़े से अंधकार के समय में था, वहीं जहां तानाशाहों का उदय हुआ, वहां राजा के समान पशु के साथ घड़ी भर के लिए सामर्थ्य पाई। अब ये ठीक है, वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, महिमा हो, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं। इच्छा है मैं अभी इस पर वचन प्रचार करूं। वो चुने हुए जगत के रचे जाने से पहले और अपनी बुलाहट के प्रति विश्वासी हैं। हालेलुया, ये ठीक बात है, वे चुने हुए और विश्वासी हैं, और जोड़ने वाला, देखा, चुने हुए और विश्वासी यानी ईमानदार, वे उस पर जय पाएंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कितने बड़े हो जाएं। और ये महान साम्यवाद, आज हमारे यहाँ साम्यवाद का जोर है, इसके लिए चिंता ना करें, ये ठीक परमेश्वर के हाथों में कार्य कर रहा है। मैं इस बाइबल में से सिद्ध कर सकता हूँ, वो प्रत्येक शहीद होने वाले को जिसने उन्हें कभी भी घात किया है, वो उसे भोगने के लिए तैयार करेगा। जी हाँ श्रीमान, आप ध्यान दें, ये सब राजा आपस में सहमत हैं और उससे घृणा करेंगे, और सारा राष्ट्र, सारा जगत साम्यवाद के प्रभाव में है। क्यों? ये परमेश्वर का कार्य है कि उसे दंडित करे। आप कहते हैं भाई ब्रणम, एक मिनट रुकिए, साम्यवाद परमेश्वर की कार्रवाई है। बिल्कुल निश्चय ही ये परमेश्वर की कार्रवाई है, बाइबल ने ऐसा कहा है, परंतु ये अभक्ति और निंदनीय गलत लोगों में न्याय की उद्घोषणा में बढ़ रहा है। इस संसार में क्या बचा है, हमें क्या मिला है? यहाँ उस दिन, यदि संभव हो तो मैं अपने विषय पर एक मिनट रुकूंगा। मैं पवित्र वचन के एक स्थान में पढ़ रहा था जहाँ अभेद संतान 14 पीढ़ी तक प्रभु के भवन में प्रवेश नहीं करेगी। आप में से ये कितने जानते हैं? ये ठीक बात है, व्यवस्था विवरण 23, एक अवैध संतान, यदि एक स्त्री को खेत में पकड़ा हो जो कि मनुष्य की सुरक्षा से परे हो, और वो मनुष्य उस स्त्री को अपने वश में कर ले, उस मनुष्य को उस स्त्री से ही ब्याहना पड़ेगा, चाहे वो व्यभिचारिणी भी हो जाए, उसे मरने तक उसके संग रहना पड़ेगा। और यदि ये स्त्री इससे विवाह करे और ये दिखावा करे कि वो कुंवारी है और वो ना हो, तो वो इस कारण मारी जा सकती है। और यदि कोई पुरुष और स्त्री जो विवाहित हों और वे अवैध संतान को जन्म दें, तो वो परमेश्वर की सभा में 14 पीढ़ियों तक नहीं जा सकता। और 40 वर्ष की एक पीढ़ी 400 वर्षों तक पहले की वो वंश इसराइल से बाहर ना हो जाए। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। आप कैसे आशा करते हैं क्योंकि आप किसी विशेष नामधारी से संबंध रखते हैं, तो कभी भी प्रभु यीशु के लहू को पार कर सकते हैं और भीतर जाने की आशा करते हैं। आपको परमेश्वर के ही आधार पर आना है, या तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम चाहे डीकन या प्रचारक जो भी हों, इससे इसका कोई मतलब नहीं, आपको परमेश्वर की ही परिभाषा पर आना है। 14 पीढ़ियां, वो व्यक्ति इस समय यहीं पर बैठा है जो मुझसे इस विषय पर बातें कर रहा था। बोला कि हम कैसे जान सकते हैं कि कभी कोई बच सकता है। मैंने कहा यहीं पर जहां आपको एक अच्छा कैल्विनवादी होना चाहिए। आपका नाम पृथ्वी के रचने से पहले पुस्तक में लिखा गया। परमेश्वर ने वो लहू की धारा ली, ये उस पर निर्भर करता है। देखा, ठीक है, उसके पास क्या है? सुनिए, आप युवा लोग आज, मैं नहीं जानता कि आप कलीसिया में आते हैं या आप कहां से आते हैं। आप युवा लड़के और लड़कियां, क्या आप जो कर रहे हैं उसका अनुभव किया है? यदि वहां कोई दूसरी पीढ़ी है, आपके बालकों पर जो आप करते हैं उसका क्या न्याय आएगा? क्या आपका कोई सम्मान आदर नहीं है? आप लड़कियों, आप जो छोटे छोटे वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमती हो, आप जानती हैं कि इसका प्रभाव आपकी पुत्री पर पड़ रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी दादी माँ एक मक्खी मार थी और आपकी माँ गाने वाली लड़की थी, और यही कारण है कि आप आज तक तन उघाड़ने वाली हैं? निश्चय ही आपके बालक क्या होंगे? जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने कहा वो अभिभावकों के अपराधों को बालकों में देखेगा और उनके बालक 3 और 4 पीढ़ी। और क्या आप ये अनुभूति करते हैं मेरे भाई? हर बार जो आप करते हैं जो कि सही है, ये आपके बालकों पर इसका प्रतिफल घटित होगा। यहाँ देखिए, हम इब्रानियों का 7वां अध्याय ले। बाइबल ने कहा जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा आता था तो मलकीसदक ने उससे भेंट की और उसे आशीष दी और कहा, अब लेवी दशमांश देने के विषय में बात कर रहे हैं, कहा लेवी के पास प्रभु से आज्ञा थी कि अपने भाई से दशमांश लें, और लेवी जिसने दशमांश लिया उसने दशमांश दिया, क्योंकि वो अभी अब्राहम की देह में था जब मलकीसदक ने उससे भेंट की। और अब्राहम उसका महान परदादा था। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब, और याकूब से लेवी। लेवी पिता, दादा, परदादा। और जबकि लेवी अब्राहम की देह में था, बाइबल ने कहा उसने मलकीसदक को दशमांश दिया। हालेलुया। कोई भी आपसे ये न कहे कि किसी भी प्रकार का संसार का कार्यक्रम परमेश्वर के महान कार्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। वो कार्यवाही ठीक प्रकार से हो रही है। इसकी योजना वहाँ आरंभ में बन गई थी। वहाँ शैतान या इतने शैतान नहीं थे कि उसकी योजना में हस्तक्षेप करते। अब क्या बाइबल संभवतः नहीं कहती उसने इसे चुकाया? बाइबल ने कहा उसने दशमांश दिया जब वो अपने महान दादा की देह में था। महिमा हो, ये मेरा प्रभु है। ओह, वो इससे पहले कि संसार कभी बनाया जाता वो जानता था। उसने सारी बातों को जाना और अब्राहम में उसने दशमांश दिया। और बहन भाई, आप यहाँ कैसे भाग सकते हैं और लोग दूसरे पुरुषों की स्त्रियों के साथ भाग कर रहते हैं और स्त्रियाँ घरों को तोड़ रही हैं और आपके समान रह रही हैं और दूसरी पीढ़ी से क्या आशा करते हैं कि क्या होगी? यहाँ ये क्या है? अब ये कुछ नहीं परंतु अवैधों का झुंड, व्यभिचार की उथल पुथल। और इसके लिए एक चीज बची है और वो परमाणु का दिन जिसमें हम रह रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, हम अंत के समय में हैं। आज प्रातः वहाँ कैंटकी के पहाड़ों पर बैठा था एक छोटा लड़का जिसके पास आप कठिनाई से 10 फीट तक की दूरी तक जा सकते हैं। सारे गम राब बना रहा था, संभवतः ये भी न जानता हो कि कौन सा वाला सीधा या उल्टा है। जब उसने सुना मैं एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा, मैं नहीं जानता था कि मैं कहां हूं। मैं केवल एक शोर करने वाले के मध्य में था और मैं तो बस वहां गिलहरियों के शिकार पर जा रहा था। और जब मैं वहां पर बैठ गया मैं उससे बातें करने लगा और इस लड़के ने कहा कि वो सेना में जा रहा था और मालूम पड़ा कि हम प्रभु के विषय में बात कर रहे हैं। और उसने कहा, प्रचारक, क्या आप ये विश्वास नहीं करते कि हम अंत के समय में हैं? वहाँ दूर उन पहाड़ों में, मैंने कहा निश्चय ही हम अंत समय पर हैं। निश्चय ही मेरे पुत्र हम अंत समय पर हैं। हम यहाँ पर हैं, यही घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं भाई, हम उसी स्थान पर हैं। क्या आप नहीं देख सकते वहाँ पहले किस प्रकार से माताएं और पिता लोग वे कैसे रहा करते थे और दादा और दादी? क्या आप नहीं देख सकते कि पापा और मामा कैसे रहे? कोई आश्चर्य नहीं आज हम भ्रष्टाचार में हैं। कोई आश्चर्य नहीं आप अपने मस्तिष्क से परे प्रचार कर सकते हैं। वे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे वैसे ही और आपके मुख पर थूकेंगे। वे सिगरेट पियेंगे और आपके मुंह पर धुआं मारकर और कहेंगे आप अपना काम देखो। क्यों? क्योंकि वे उसी गोत्र से निकलकर आए हैं। अब मैं इसे सीधा सीधा लेने जा रहा हूँ, सर्प वंश का। हम देखेंगे कि वो कहाँ कार्य कर रही है। देखिए वे क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। वे शैतान के बच्चे हैं जब से पृथ्वी रची है, ये ठीक बात है। और इसके लिए कुछ नहीं बचा, केवल न्याय, केवल यही जो बचा है, और कुछ हो ही नहीं सकता, केवल न्याय। परमेश्वर सारी चीजों को साफ कर देगा और मनुष्य ने ये स्वयं किया है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा, परंतु वो जानता है कि ये इस प्रकार से होगा। यही कारण है कि उसने कहा कि वो पृथ्वी के सब रहने वालों को धोखा देगा, सिवाय उनके जिनके नाम पृथ्वी के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आइए क्या अब थोड़ा और आगे पढ़ें। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम 12वें पद पर हैं, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे, और ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी उनके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। अब इन 10 सिंहों पर ध्यान दें, ये 10 राज्य। देखिए हर चीज का पतन हो रहा है। ये तानाशाह कौन है? देखिए किस प्रकार से ये तानाशाह झुकते हैं, ये कहाँ पर झुक रहे हैं? मुझे केवल ये बताएं कि ये साम्यवाद की ओर नहीं झुके। और वे क्या वेश्या से घृणा करेंगे, वो स्त्री, वो कलीसिया? परंतु क्या, ध्यान दें क्या करने जा रहे हैं, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। वे इस चीज को नक्शे पर से समाप्त कर देंगे, बिल्कुल उसी निश्चय के साथ जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे पास उस कलीसिया के विषय को लेने के लिए समय होता और पवित्र वचन में से होते हुए देखते, जहाँ ये कहा गया है कि पढ़िए, पृथ्वी के सारे राजा और सारे जहाजों के स्वामी और सारे विलाप करेंगे, क्योंकि बाबुल घड़ी भर में नाश हो गया, एक घड़ी में उसका समय आ गया था। और ओ, उसने कैसे कहा, संतो आनंदित हो और तुम सब भविष्यद्वक्ताओ, क्योंकि परमेश्वर ने संतों के लहू का बदला लिया है और तुम्हारे भाइयों का। देखिए ये ठीक बात है, निश्चय ही साम्यवाद परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि राजा नबूकदनज़र उसके हाथों में कि आकर उन यहूदियों को ले ले, वे नंगे पांव गए, और पाप धर्मी वंश को भ्रष्ट करता रह सकता है, और वो वहीं बना रह सकता है जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए, उस स्थिति तक आता है, क्योंकि उसके माता पिता और आदि हम में पहले ऐसे ही रहे, और वो दुष्ट, वहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। और आप जानते हैं कि यीशु ने कहा, यदि वो इस कार्य को घटाता नहीं तो कोई भी प्राणी ना बचे। क्या आप देख सकते हैं, कि हमें ये क्यों मिला है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आर्थर गॉडफ्रे का और प्रत्येक और एल्विस प्रेसली का आप जानते हैं, और कुल मिलाकर कूले मटकाना और बाल उनकी गर्दन तक लटक रहे हैं, और सारे नवयुवक और युवतियाँ इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये क्या है? क्योंकि ये पहले से जीने वाले झुंडों से आ रहा है, अवैध लोग, कुछ नहीं बचा। और वे खड़े होकर और गाएंगे, परमेश्वर तेरे समीप जैसे मटर बीनने वाली अरनी, और इस प्रकार के वे सब कुछ इस प्रकार के भजन गाते हैं, और इसी प्रकार से आदि आदि। क्या आप जानते हैं, ये पूर्णतः एक ढोंग है। जी हाँ श्रीमान, उस मनुष्य का इस प्रचार मंच से कोई लेना देना नहीं जो वहाँ नाच और गाए और आवारा गर्दी और वह सारी चीजें, ऐसे का यहाँ जरा भी कोई मतलब नहीं। ये याजक के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए, परमेश्वर द्वारा बुलाए गए सेवक पीछे यहाँ से संबंध रखते हैं, और ऐसी जगह से संबंधित नहीं है। इसके साथ आज यही बात है, उन्होंने कलीसिया को सराय से अधिक और कुछ नहीं बनाया। सराय ठीक है, आप ये करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, परंतु मैं आपको पहले ये बता दूं, यत्न करने के द्वारा बहुत ही अंतर है। जी हाँ श्रीमान, सराय में आप उन चीजों को करना चाहते हैं और उस प्रकार दावतें आदि आदि, ये आप पर निर्भर करता है, परंतु भाई कलीसिया को प्रचार मंच से होते हुए और तहखाने तक साफ कर देना चाहिए। ये ठीक बात है, मेरा अर्थ नई खिड़कियों आदि के लगाने से सफाई का अर्थ नहीं है, मेरा अर्थ पुरानी विधि से परमेश्वर के द्वारा भेजे गए बिदारी को, जो कि चीजों को एक ओर से दूसरी तक उड़ा कर रख देगा। जी हाँ श्रीमान, जैसे कि सेब के ढेर के आसपास सब उजियाला किया जाता है बिजली का, तो सफेद वाले कीड़े, जी हाँ श्रीमान, वे भाग जाएंगे जब उजियाला होगा। अब ध्यान दें, वे एक ही मन है, अपना अधिकार देते हैं। अब मैं इसके नीचे हूँ, 10 सिंह, हाँ अब, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। आप वहीं जाते हैं, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। और वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। अब इधर उधर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं कि ये कैथोलिक पुरोहित तंत्र है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका उतनी ही निश्चितता से विश्वास करता हूँ जितने की मैंने पवित्र आत्मा पाया है। मैं वैसे ही भली प्रकार से विश्वास करता हूँ जैसे कि एक मसीह के समान मैं आज यहाँ खड़ा हूँ कि कैथोलिक पुरोहित तंत्र है वो वेटिकन नगर जो सात पहाड़ों पर बैठा है। कलीसिया का पुरोहित तंत्र पशु है, जो था, जो नहीं है, और ये बाबुल है। हर चीज साफ साफ चित्रित हो गई वचनों में से होते हुए, बिल्कुल सिद्ध है कि ये कैथोलिक कलीसिया है। अब यहाँ वो आपको चौंकाने वाला प्रसंग है। आप कहते हैं भाई बहनम आप मुझ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं आपसे कुछ पूछूं। आइए हम वापस पांचवें पद पर चलें। और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ है, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। वो क्या थी? WHORE यानी वेश्या। और वो एक MOTHER माँ थी। क्या? MOTHER माँ। उसने किसी को जन्म दिया, पुत्रों की एक माता, वेश्याओं की। वेश्या क्या है? वही जैसे एक व्यभिचारिणी, आचरणहीन स्त्री। उसे किसने आचरणहीन बनाया? उसकी शिक्षा ने। वो मसीह कलीसिया होने का नाटक करती है, परंतु मनुष्य द्वारा बनाए गए रीतियों को दे रही है। और यहाँ वो कहती है कि उसके पास कि वो वही पहली संस्था है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें से और संस्थाएं निकली हैं। वो वेश्याओं की माता है, क्या ये ठीक है? वेश्याओं की एक माँ। अब वो पुत्रों की माता नहीं हो सकती, वो माँ नहीं हो सकेगी, इसे स्त्रियों की ही माँ होना है। और यदि वे स्त्रियाँ थी वे कलीसियाएं थी। अब हम इसे मालूम करें उसमें से क्या निकलता है। पहली संस्था कौन सी थी? कैथोलिक कलीसिया। दूसरी संस्था कौन सी थी? लूथर। तीसरी संस्था कौन सी थी? ज्विंगली। ये किस प्रकार से आई? कैल्विन। और ये एंग्लिकन पर आई, और एंग्लिकन से होते हुए मेथोडिस्ट में। मेथोडिस्ट क्या उत्पन्न करेगा? फिर एलेक्जेंडर कैंबेल निकल कर आए। एलेक्जेंडर कैंबेल से जॉन स्मिथ निकलते हैं। एलेक्जेंडर कैंबेल से मसीह कलीसिया, तब वे मसीह की या चार या पांच कलीसिया में हो गए और बाकी सारे बात समाप्त हो गए। तब यहाँ बैप्टिस्ट कलीसिया आती है, इसमें से बहुत सारे निकले, और मेथोडिस्ट कलीसिया में से निकलते हैं, और मेथोडिस्ट कलीसिया में से सबसे पहले वेस्लियन मेथोडिस्ट आते हैं। तब वे चार या पांच बार टूटते हैं, तब वे दूसरे प्रकार के मेथोडिस्ट में आते हैं, और तब फिर वे अलग हो जाते हैं, और तब वे फ्री मेथोडिस्ट में आते हैं, और तब वे उससे नाजरीन में आते हैं, और नाजरीन से पिलग्रिम ऑफ होलीनेस और पिलग्रिम ऑफ होलीनेस से होते हुए आगे। छोटा सा एक बात इस प्रकार समाप्त होता है, नीचे की ओर बढ़ता जाता है। उनमें से प्रत्येक का छोटा छोटा आरंभ है। और उनमें से प्रत्येक ने क्या किया? अंत में वे पेंतिकोस्तल में आ गए। और पेंतिकोस्तल ने क्या किया? वही चीज जो उनकी माँ ने किया, वे फिर से वापस जाकर संस्थागत हो गए। और ये क्या बन गए? एक नामधारी। एक में आते हैं। पहली बात, आपकी शिक्षा क्या है? लड़के, वे तुम्हें पतली कंघी से छानते हैं ये जानने के लिए कि आप कौन हैं, आप क्या विश्वास करते हैं। और भाई, यदि आप ठीक उनके साथ मेल नहीं खाते तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है, और ये ठीक बात है। और मत सोचिए क्योंकि आप कहते हैं कि आप पेंतिकोस्तल हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। भाई, बहुत सारे पेंतिकोस्तल होंगे जो मार्ग से हटे हुए होंगे, जैसे कि मार्ग पर ही हों, मैं निश्चित हूँ, समझे। अब वे सारी संस्थाएं यदि वे अपनी पेंतिकोस्तल आशीषों को जाने देंगे, संस्थागत नहीं करते, उसे भाईचारे में बनाए रखते और पवित्र आत्मा को अलग करने देते। पवित्र आत्मा अलग करता है। हनानिया सफीरा एक बार भीतर आए, कुछ कुछ कहा, और पवित्र आत्मा ने कहा तुमने क्यों झूठ बोला। परंतु हम कहते हैं अब वो भाई जोन्स है, अब उसके विषय में कुछ बुरा ना कहें, कलीसिया में वही सबसे अच्छा देने वाला है। मुझे मालूम है उसके पास पवित्र आत्मा है, मैंने उसे अन्य भाषा में बोलते सुना है, और मैंने उसे आत्मा में चिल्लाते देखा है। ये उससे अधिक कुछ और नहीं है कि आप मटर के दाने टीम की छत पर डालें, समझे। इस बात से कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर कहता है, उसे कहना है कि वो है या नहीं, बिल्कुल सही। परंतु हम इसे अपने नामधारी के पास ले जाते हैं, परंतु हम उसे सभा से बाहर निकाल देते हैं। वननेस वालों ने उसे ले लिया, कुछ समय तक वननेस उसे लिए रहे, तब उन्होंने उसे बाहर कर दिया क्योंकि वे उसे वहाँ ले गए, और जीसस ओनली उसे ले लेते हैं। जीसस ओनली कुछ समय तक रखते हैं, अगले जो उसे लेते हैं वे चर्च ऑफ गॉड उसे ले लेते हैं, चर्च ऑफ गॉड और प्रोफेसी उसे ले लेते हैं और टॉमिलीसन का अभियान उसे ले लेता है। ओ प्रभु भाई, यदि हमारे पास भागने को नहीं है, वो पेंटिकॉस्टल में है, वो अंतिम बेदारी, और अब उनके पास नीली लपट है और उनके पास तेल के उपासना करने वाले हैं और मुख पर लहू और ओ दया हो, मैं नहीं जानता कि अब वे कहाँ चले गए। केवल एक ही बात है कि सारा मामला भ्रष्ट हो गया है। क्या आपने जाना कि बाइबल ने कहा कि वे भ्रष्ट हो जाएंगे? क्या आपको मालूम हुआ बाइबल बोलती है कि ये दिन यहाँ होंगे जबकि प्रभु की मेज भी उल्टियों से भरी हुई होगी, और कहा मैं किसको शिक्षा दूंगा, मैं स्वयं को किसको समझाऊंगा, क्योंकि नियम पर नियम होना चाहिए, नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, वो किसको शिक्षा देगा, उनको जो माँ के दूध से छुड़ाए गए हैं, समझे? अब कोई नहीं है, यहाँ कोई भी स्त्री नहीं है इस नगर में, एक शिष्ट महिला जो एक कुंवारी लड़की को जन्म दे सकती है, वो होती है जब वो जन्म लेती है, अब वो भली प्रकार से रह सकती है, परंतु यदि आप ध्यान न दें कि उसकी माँ का स्वभाव 10 में से 9 उसके समान होता है, वो ठीक अपनी माँ के समान व्यवहार करती है। अब आप जानते हैं कि ये ठीक बात है, एक वेश महिला जो एक बदनाम घर को चलाती है, वो एक छोटी बालिका को जन्म दे सकती है और वो 16 वर्ष की होती है, उतनी ही शुद्ध और सभ्य जैसे कोई जीवित हो, परंतु यदि वो उसी प्रकार बनी रहती है, परंतु बात यह है कि वो वापस मुड़कर और अपनी माँ के समान व्यवहार करती है। अब कैथोलिक कलीसिया पुरानी वेश्या थी, वो अपनी ही बनाई हुई शिक्षा के साथ आई, जिसे बाइबल अंधविश्वास कहती है, वो अथाह कुंड से निकल कर आती है और विनाश में पड़ेगी, बाइबल ने ये कहा है। अब वे ये शिक्षा देते हैं कि ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, और तब यह मेथोडिस्ट कलीसिया आती है जो कि उससे जन्मी है, एक सुंदर युवा महिला, परंतु उसने क्या किया, वो ठीक वापस घूमी और वही किया जो उसकी माँ ने किया, अपने भक्तगणों को छोटे छोटे वस्त्र पहनने दिए, उन्हें धूम्रपान करने दिया, उन्हें चलने दिया और उसी प्रकार से किया जैसे करना चाहिए। वहाँ इस विषय में कुछ नहीं कहा गया, वहाँ छोटा पुराना कच्चा सेवक प्रचार मंच के पीछे है, वो भयभीत है कि किसी दिन उसका वेतन समाप्त हो जाएगा, बिस्कुट बंद हो जाएंगे। भाई मैं आपको बता दूं, भले ही मुझे कुरमुरे खाकर और सोते का पानी पीना पड़े, मैं वचन प्रचार करूंगा, इस सत्य के विषय में बताऊंगा। यदि मेरे भक्तगण मंडली का प्रत्येक उठकर बाहर चला जाए, मैं उन्हें सत्य ही बताऊंगा। जी हाँ अवश्य। क्या मामला है? ओ ये एक खाने का कूपन है। अच्छा आप जानते हैं कि मैं यहाँ इस नगर के सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर हूँ? आप बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट एक झूठे भविष्यद्वक्ता को सुन रहे हैं। अब ये कठोर है, परंतु कोई भी चीज जो बाइबल के विरोध में सिखाती है एक झूठा नबी है। मैं चिंता नहीं करता कि वो कितना चमकाया गया है, ये झूठी भविष्यवाणी है, ये ठीक बात है। ओ जब तक आपका नाम पुस्तक में रहता है हर चीज ठीक है, आपका नाम दर्जन भर पुस्तकों में हो सकता है, यदि ये जीवन की पुस्तक में नहीं है तो आप नष्ट हैं। आप सदा बहुत भले हो सकते हैं, आप बहुत ईमानदार हो सकते हैं और सभ्य हो सकते हैं, इससे इन बातों का कोई लेना देना नहीं। ऐसा याकूब से दुगना अच्छा था, जब व्यक्ति की बात आती है अपने बूढ़े अंधे पिता को देखभाल कर रहा है और सारी बातें, और याकूब धोखेबाज अपनी माँ के लबादे के आसपास रहता है, छोटा सीधा लड़का, परंतु परमेश्वर ने कहा मैंने याकूब से प्रेम किया और ऐसाव को ना पसंद किया इसके पहले कि दोनों लड़के जन्म लेते। रोमियो 8 ऐसा कहता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य में क्या है और वो ये भी जानता है कि कलीसिया में क्या है। हम जीवन की रोटी के द्वारा जीवित हैं, परमेश्वर की वचन की रोटी, अब इस कारण हम नामधारी कलीसिया नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा दूसरा देना चाहता हूँ, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो महान अप्रकाशित वाक्य 19:2 में, मैं यहाँ पर किसी चीज पर निशान लगा रखा है, मैं दृष्टि डालना और देखना चाहता हूँ कि ये अब क्या है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। ये कैथोलिक कलीसिया का अंत है। अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर भी ध्यान दें कि एक नामधारी, कि यहाँ पवित्र शास्त्र में भी एक नामधारी पाया जाता है जो कि, और बाइबल नामधारी के विषय में कभी नहीं बोलती। नामधारी कैथोलिक कलीसिया से आती है, वो नामधारी की पहली माँ है और प्रत्येक नामधारी उसी में से निकला है। अब ये थोड़ा चुटकी नोचने वाला है, अब ये हर समय थोड़ा कष्ट देने वाला है, देखा। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि नामधारी कलीसियाएं परमेश्वर से ना ही जन्मी या अभिषिक्त हुई थीं, ये शैतान के द्वारा अभिषिक्त थी। परमेश्वर की कलीसिया है, हम बटे हुए नहीं हैं, हम सब एक देह हैं, एक ही आशा और शिक्षा, प्रेम में एक। ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, वे चाहे जो हों, वे बातें, हम सब एक हैं, ये ठीक बात है। चाहे वो मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट है, भाई यदि वो नया जन्म पाए हुए है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो मेरा भाई है, हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है। जी हाँ श्रीमान, कोई अंतर ना बनाए। मूसा कभी कभी चारों ओर देखकर और कह सकता था, तुम जानते हो कि वो कट्टर पेंटिकोस्टल झुंड, भाई ब्रैनम आप इस प्रकार के झुंड के लिए क्यों बाहर निकल कर आ जाएंगे? आप जानते हैं क्या, मूसा ने इसराइल के बालकों को देखा, उसने उसी खिड़की से देखा जिससे फिरौन ने देखा। फिरौन ने उन्हें गारा बनाने वालों के झुंड के समान देखा, परंतु मूसा ने उन्हें परमेश्वर के चुनुओं के समान देखा। वो जानता था कि उनके पास प्रतिज्ञा है, क्यों उसने ये वचन से जाना और विश्वास के द्वारा। जब फिरौन होने के लिए उसे सिंहासन पर बैठना था और सारा संसार उसके कदमों में था, वहाँ बैठा और अपने मुख में दाग रतूंडेला और उसे पंखा करने के लिए सुंदर सुंदर महिलाएं थीं, सम्राट के समान था, अधिनायक के समान था, संसार का राजा, युवा मूसा 40 वर्ष का, उसके हाथ में सब कुछ था। जब उसने गारा बनाने वालों के झुंड को देखा, परंतु वो जानता था कि वो उनमें से एक है। हालेलुया, यही है, वो जान गया कि वो उनमें से एक था और केवल विश्वास के द्वारा उसने चुना। प्रत्येक को चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है। इस समय आप चुनाव करने जा रहे हैं, रहता है आप चुनाव करने जा रहे हैं। यदि आप जीवित रहते हैं तो आप कल रात्रि चुनाव करने जा रहे हैं, अभी तो आपको चुनाव करना है। भाई बहुत समय पहले मैंने चुना, ये बाइबल मेरा शब्द कोश था, ये बाइबल मेरे जीवन की पुस्तक थी, ये बाइबल परमेश्वर का वचन थी, बाइबल जिसके द्वारा मैं जीवित हूँ, ये बाइबल है जिसके पक्ष में मैं खड़ा होता हूँ। इसलिए मूसा ने परमेश्वर के बालकों को देखा और उसने केवल इतना ही नहीं कहा, ओ ये कितने अच्छे लोग हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, ओ नहीं मैं उनके विरोध में एक भी शब्द ना बोलूंगा। इसी प्रकार आज बहुत से लोग करते हैं, ओ वे पेंतिकोस्तल और वे लोग जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है और वे लोग जो दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, ओ मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। परंतु मूसा ये नहीं था, उसने मिस्र को छोड़ दिया और उनमें से एक बन गया, वो अपने भाइयों में चला गया, वो उनमें से एक था। भाई मेरा मार्ग यही है, मैं ठुकराए हुए प्रभु के लोगों के संग अपना मार्ग लूंगा, यदि ये थोड़े से या जो भी हों। उनके पास प्रतिज्ञा थी और मैं उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए देखता हूँ, वे लोग मेरे भाई हैं, ये ठीक बात है। अपना चुनाव करें और उनके संग खड़े हों, सही या गलत जैसे भी हों वहाँ खड़े हों। यदि वे गलत हैं उनको सही करने के लिए सहायता करें, ठीक है। आप उन्हें आस पार धमका कर अच्छा नहीं बना सकते, देखिए उन्हें बाहर खींचने का यत्न करें। चार्ली जैसे उन्होंने भाई एलन के विषय में कहा, आग के विषय में उन्होंने हाथों में लहू, मैंने कहा मैंने कभी भी ए एलन का अपमान नहीं किया। मैंने कहा यदि मैं ए एलन के समान प्रचार कर सकता होता तो मैं कभी भी चंगाई सभा नहीं करता। अब जब लहू पर असहमति की बात आती है कि ये आपके हाथों में पवित्र आत्मा का प्रमाण है, तो मैं इससे असहमत हूँ। जब भाईचारे की बात आती है तो वो मेरा भाई है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में खड़ा हूँ, ये ठीक बात है। यदि वो गलत है तो मैं उसकी सहायता करने का यत्न करूँगा, और यदि वो गलत नहीं, मैं गलत हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी सहायता करे, और इस प्रकार से हम इसे लेंगे, साथ चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, वो भेद थी बाबुल, माता वैश्याओं की। अब क्या आप देखते हैं आज कलीसिया, मित्रों क्या आप देख सकते हैं आज ये कलीसियाएं कैसी हैं? जैसे भी चाहे वैसे ही जिए, बिल्कुल ठीक बात है, बढ़ते रहिए। कुवर गंदगी खाता है, कोई ध्यान नहीं देता, ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। आप क्यों पुराने रिवाजों वाले बनना चाहते हो? अब उनकी शिक्षा को देखिए, अब मैं चाहता हूँ अब ध्यान दें, ये उनकी आदत है। क्या आप देखते हैं कि कुछ वर्षों पहले कि केवल कैथोलिक कलीसिया ही ऐसी थी जिसने सिनेमा जाने की अनुमति दे रखी थी? मेथोडिस्ट कलीसिया ऐसी बात नहीं सोचती, और वे सारे नामधारी नहीं, ये शैतान के कार्य हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या घटित हुआ। जी हाँ श्रीमान, और आप जानते हैं कि आप उन युवा कैथोलिक लड़कियों को ले सकते हैं, वे इन छोटे के साथ आती हैं। अब आप में जो कुछ पुराने लड़के हैं, जितना कि मैं बूढ़ा हूँ, बाहर आओ और इस छोटे से स्थान में जाओ जहाँ वे घुटनों से ऊपर पहनते हैं। वो व्यक्ति, मेरा अनुमान है, आज रात्रि नरक में है। मैं नहीं जानता, मैं उसका न्यायी नहीं हूँ, परंतु जब उसने पहली बार वो गंदा गाना बनाया जो रेडियो पर आया बिना जांचे, लड़को मैं छोटी लड़की हूँ, लड़को मैं नीचे और अपने सुंदर घुटने दिखाओ, आप में से कितनों को स्मरण है जब ये वर्षों पहले पहली बार आया था? ये वो पहली बार की गलती थी, ये ठीक बात है। और जब उन्होंने इस व्यक्ति को टेक्सास से बुलाया और उन स्त्रियों को बाहर लेकर आए और उन अंदर के कपड़ों से उन्हें ऐसा बनाया कि वे कुछ दिखाई दें जो कि वे नहीं थे, और इस प्रकार की बातें, इन बातों के साथ उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। और अब वे क्या करते हैं, और ये भीतर की ओर धीरे धीरे बढ़ती गई, ये एक आत्मा है। उस दिन एक व्यक्ति ने मुझसे बातें कर रहा था, उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छा ईमानदार लड़का है और वो लड़का जिस वस्तु पर अपने हाथों को रखता है वही चीजें लेता है। मैंने कहा, क्यों? वो एक चोर की संगति में है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो चोर है तो आप अपने आप ही चोर हो जाएंगे। मेरी बूढ़ी केंटकी वाली माँ कहा करती थी, यदि आप ऐसे कुत्ते के साथ लेटेंगे जिसके मक्खियाँ हैं तो आप भी मक्खियों के संग उठेंगे। आप एक स्त्री को लें जो अच्छी ना हो, और एक लड़की को, और उसे एक अच्छे सभ्य लड़के के साथ रख दें, और पहली बात आप जानते हैं कि वो एक पिल्ले के समान साधारण है, और इसी प्रकार उल्टा करें, आप अपने संगति के द्वारा जाने जाते हैं, स्वयं को अलग करें और उनके मध्य में से बाहर निकल कर आओ। बाइबल ने कहा, तुम अलग हो जाओ, ये ठीक बात है। यदि उनके नामधारी कलीसियाएं जैसे भ्रष्टता में जा रही हैं, जैसे कि वे लोगों को जाने दे रहे हैं, ठीक है, उस दिन एक बड़ी शानदार बैप्टिस्ट कलीसिया उन्हें विसर्जित करना था, केवल 20 मिनट प्रचार करना था, वो व्यक्ति जो कर सकता था, क्योंकि पादरी को धूम्रपान करना था। सारी भक्त मंडली बाहर निकल गई, वे सब बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, और फिर वापस आए और पादरी और वे सब। मैं एक भक्तगणों की मंडली में गया, वहाँ एक व्यक्ति बड़े लंबे लबादे को पहले पहने बैठा था, वहाँ खड़े होकर कहा, प्रचार मंच पर इस प्रकार से झुका, एक फूल के विषय में जो उसे पहाड़ों पर मिला था उस विषय में बातें कर रहा था, वहाँ केवल यही था, और वापस नीचे चला गया और उसकी उंगलियाँ सिगरेट के धुएं से पीली पड़ी हुई थी। हाँ, और उन स्त्रियों के विषय में बातें कर रहा था, वो व्यक्ति खेलने जा रहा था। ये जर्मनी खेल क्या है जिसे वे खेलते हैं, आप उन ताश के पत्तों के साथ खेलते हो, आप जानते हैं। ओ, मैंने सोचा मैं इसे स्मरण कर लूंगा, पिनो चले, वे पिंचले खेल खेलने जा रहे थे। मैं सोचता हूँ आप उसी को खेलते हैं, ये निरंतर खेलने के ताश होते हैं, तहखाने में पिंचले खेल। मेरे प्रभु, वही उसकी नेव है, कोई आश्चर्य नहीं वे उससे क्या करते हैं, और कैथोलिक कलीसिया के लिए शोर मचाते हैं इन घूमने वाले स्थानों में, और लॉटरी खेल रहे हैं। क्यों, आप प्रोटेस्टेंट भी वैसे ही गंदे हो जैसे वे हैं, इसलिए आप इस विषय में क्या कह सकते हैं? कढ़ाई केतली को गंदा नहीं कह सकती, निश्चय ही नहीं। और आप करते हैं, और वे कहेंगे, भाई मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ। जब तक आप नया जन्म प्राप्त नहीं करते आप कुछ नहीं है, ये ठीक बात है। और जब आप ये करते हैं आप जानते हैं कि आपके भीतर से आपको बताता है कि ये बातें गलत हैं, और आप इससे बाहर आ जाएंगे बिल्कुल उसी प्रकार से, निश्चित रूप से, जैसे बत्तख के लिए घुटने तक। आप जानते हैं कि ये सत्य है, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान, वो चीज साथ साथ चलती है। क्यों? वेश्याओं की माता, इन्हीं किन्हीं दिनों में वो बूढ़ी माता कहने जा रही है, तुम जानते हो क्या प्रिय, आखिरकार हम दोनों एक ही हैं। और आप जानते हैं इसके बाद फिर क्या है, कलीसियाओं का संघ सब एक साथ मिलने वाले हैं, जैसे कि वे अब हैं। और आप जानते हैं कि क्या होने जा रहा है इस प्रकार के छोटे से झुंड के साथ, लड़को आपको उसका भुगतान करना है, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु चिंता मत करिए, मेमना उस पर जयवंत होगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और परमेश्वर अपनी कलीसिया की अगुवाई करेगा बजाय नामधारी कलीसिया के। वो पवित्र आत्मा का सुंदर तेल उस कलीसिया पर उंडेलेगा, भाई स्वर्ग से आग गिरेगी, चिन्ह और चमत्कार घटित होंगे जो आपने इसके पहले कभी ना देखे होंगे। जी हाँ श्रीमान, छोटे झुंड मत डर, ये तेरे पिता की इच्छा है कि ये राज्य तुम्हें देगा। जी हाँ श्रीमान, जो अंत तक धीरज धरेगा, तो आप वहाँ जाते हैं, मार्ग पर ही चलते रहें, अपने सिरों को कलवरी की ओर रखें, ये बाइबल सही है, चिंता ना करें, ध्यान दें, उनकी कुछ आदतें हैं, उनके कुछ अपने आचरण हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, आप जानते हैं ये प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में रिस गई है, जो कि पहले आरंभ से कैथोलिक महिलाओं में था। क्यों? छोटे छोटे वस्त्र पहनने में कोई हानि नहीं है, और जब तक आप कलीसिया में जाते हैं और अपने सिरों पर छोटे छोटे रुमाल रखती हैं, एक प्रकार का संस्कार, शुक्रवार को मांस ना खाएं, और ओ ये तुम्हें कहाँ से मिला कि जब आराधनालय में प्रवेश करो तो अपने सिर पर रुमाल रख लो? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन में दिखाएं। ये झूठी भविष्यवाणी है, जहाँ कि आपको आराधनालय में आपको कलीसिया में टोपी पहननी है। जब आप अपने सिर पर टोपी लगाते हैं आप मसीह का अपमान करते हैं, ये ठीक बात है। मैं पुरुषों के विषय में बोल रहा हूँ। महिलाओं आपके पास ओढ़नी है, मैं आप लोगों को चुनौती देता हूँ कि मुझे दिखाएं ये कहाँ पर रुमाल या टोपी है। ये आपके बाल हैं और आपने सारे कटा दिए हैं। अब इस विषय में क्या है? ओ वे कहते हैं ये पुराना संस्कार है। यदि ये बाइबल है तो फिर परमेश्वर का वचन सही है। अधिक समय नहीं हुआ उस स्त्री के विषय में बोलते हुए जिसने यीशु के पैर धोए थे और अपने बालों को लेकर आप जानते हैं और उनसे पूछा। मैंने कहा केवल एक ही विधि है कि स्त्री ऐसा कर सकती है कि वो सिर के बल खड़ी हो और उसके पैरों को धोकर बालों से पोछे, ये ठीक बात है। ओ ये देखने में कितना अशोभनीय है, यहाँ ठंडे मौसम में इस प्रकार का छोटा सा कोट पहनकर घूमना और उनकी नंगी देह दिखाई पड़ती है। क्यों कहते हैं, क्यों आप स्त्रियों को लेते हैं? आवश्यकता है कि आपको लिया जाए। और आप पुरुष जो अपनी स्त्रियों को ये करने देते हैं, भाई मैं नहीं जानता कि आपके विषय में क्या सोचूं। अब ये ठीक बात है। और आप पास्टर, मैं नहीं समझता कि आप लोगों को यहाँ हो, परंतु यदि आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसे बताएं कि आकर बताएं मुझे देखो, समझे? उसके पास मसीह के लिए कोई सम्मान नहीं है, विपरीत इसके वो अपनी भक्त मंडली को करने देता है जो कि बिना उसके। अब वे उसके पीछे से ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि वो उन्हें इस विषय में नहीं बताता तो वो यीशु मसीह के लिए उपयुक्त दास नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, वो मसीह का सेवक होने के लिए उपयुक्त नहीं है। मसीह के दास को निर्भय होना चाहिए यदि ये बाइबल के विरोध में आता है, निश्चय ही। परंतु वे जाकर कैसे भी वही करते हैं। और तब पहली बात जो आप जानते हैं, प्रोटेस्टेंटों को इसे लेना ही था। आप अच्छे मेथोडिस्ट और आप बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और नाजरीन पिलग्रिम ऑफ होलीनेस और आप सब वही बातें लेकर बाहर आए, 6-1 की और आधा दर्जन दूसरों की। आप वहीं पर हैं, वेश्याओं की माता। आपके नामधारी जब तक वे अपने मुख्यालयों से आरंभ हुए, इससे क्या अंतर पड़ा? देखा, सारा मामला ही भिन्न हो गया। वे उन मुख्यालयों से आरंभ नहीं हुए, अपने मुख्यालय से, यहाँ से आरंभ हो सकते हैं, परंतु वहाँ से जो ऊपर है वहाँ से नहीं। निर्भर करता है कि आप कहाँ से हैं, ये सत्य है। अब मैं नहीं सोचता कि हमारे पास समय है कि इस दूसरे को लें। अच्छा हो कि मैं इसे प्रातः के लिए छोड़ दूं। ठीक है, हम इस छोटे वाले को ले लें। यहाँ हमारे पास पानी में बपतिस्मा है, हमारे पास पहले से चुन लिया जाना भी है और बहुत सारी बातें हैं। इसलिए हम इस छोटे वाले को लेंगे, स्त्रियां प्रचारक, और इसको लेंगे। अब महिला प्रचारक, मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपके पास पवित्र वचन में एक बिंदु भी नहीं है, बाइबल में नहीं है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप कहां जा रहे हैं, मैं कर चुका हूं। आपके सारे मेरे पास हैं। जी हाँ, और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अब यदि आपका पादरी नहीं जानता है कि भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, वो नहीं जानता है, तो फिर प्रचार मंच के पीछे उसके पास अधिक कार्य नहीं है। प्रचार होने के लिए आपको बताने का यत्न कर रहा हूँ, समझे? क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दोषी ठहराया गया है। अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखा। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 1 तीमोथियस 2:11 निकालें, बस इसे निकालें और हम इसे पाएंगे, और हम इसे यहाँ पाएंगे आपके प्रेरित 2 में भी। और केवल यहाँ सुने कि पवित्र वचन क्या कहता है इस विषय में। अब कोई कहता रहता है, अच्छा भाई ब्रणम, आप तो पुराने स्त्री से घृणा करने वाले हैं। मैं स्त्रियों से घृणा नहीं करता, मैं केवल स्त्री को ये करते नहीं देखना चाहता हूँ कि वो उस स्थान को ले जो उसका नहीं है। आपको स्मरण होगा वहाँ हार्वर्ड शिपयार्ड में ओहियो नदी पर एक सफल जहाजों का स्थान, वहाँ उन्होंने एक महिला अधिकारी को रख दिया था। देखिए क्या घटित हुआ, उन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। देखिए क्या हुआ, मैं आपको अभी बता दूं, महिलाओं की खाल उतारने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि पुरुष समझें, इसमें आप भी हैं। परंतु भाई मैं आपको कुछ बता दूं, ये स्त्रियों का राष्ट्र है। मैं आपके द्वारा सिद्ध कर दूंगा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, आप जिससे भी चाहें इसे सिद्ध करें। ये है हमारी मुद्रा पर क्या है, एक स्त्री। यहाँ प्रकाशित वाक्य में वो कहाँ मिलती है, आप उसे देखें। वो 13 नंबर भी है, हर चीज उसने आरंभ की। 13 सितारे, 13 धारियां, 13 कॉलोनियां, हर चीज 13 से आरंभ ही है। 13, ये प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होती है। एक स्त्री 13, और 1933 में जब प्रभु जब हम यहाँ सभाएं कर रहे थे जहाँ अब चर्च ऑफ क्राइस्ट है, वो पुराना मैसोनिक हूँ, प्रभु का दर्शन मेरे पास आया यहाँ और भविष्यवाणी की, जर्मन उठेगा और वहाँ मैगिनॉट रेखा खींचेगा। आप में से बहुतों को स्मरण है और कैसे वे वहाँ सब घिर जाएंगे और अमेरिकन वहाँ एक बड़ी हार का सामना करेंगे वहाँ रेखा पर, और ये भी कहा कि क्या घटित होगा और रूजवेल्ट के विषय में और वे बातें और वो कैसे चलाएगा और चौथे सत्र को पूरा करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये घटित हुआ और ये भी कहा कि कारें अंडाकार होती चली जाएंगी और जब तक कि अंतिम दिनों में ये अंडे के आकार में नहीं हो जाती। अब ये कहा गया कि ये कारें स्टीयरिंग के द्वारा नहीं चलेंगी, ऐसा घटित होगा, कुछ और होगा जो इन्हें चलाएगा। ये वो कारें वे उन्हें लगा रहे हैं रिमोट चलित सुरक्षा के लिए, ये ठीक बात है। तब आप नगर में प्रवेश करने योग्य ना होंगे, 20 मील की परिधि में आप 20 मील तक जा सकते हैं, आप दूसरी कार को टक्कर नहीं मार सकते क्योंकि ये रिमोट से नियंत्रित है। देखिए, अब ये ऐसे ही होने जा रहा है। और मैंने कहा स्मरण रखे उस दिन, इससे पहले कि अंत समय आता है, इसके पहले कि अंत समय आता है कि वो एक स्त्री, अब आप इसे लिख कर रख लें, एक बड़ी शक्तिशाली स्त्री का उदय होगा, या तो राष्ट्रपति या अधिनायक या इस संयुक्त राज्य में एक महान शक्तिशाली स्त्री, और वो स्त्रियों के प्रभाव में होगी। अब आपको स्मरण है ये यहोवा यूं कहता है देखिए, और वो गलत है। और इसने क्या दिया है मैं आपको बता दूं, आत्मिक बनो, खुलने दो। देखो ये क्यों कर रहा है, कैथोलिक कलीसिया को भीतर आने का स्थान देते हैं, समझे। तुम इन फिल्मी सितारों की आराधना करते हो और वहाँ बहुत सी विभिन्न चीजें, वो उपदेश जो मैंने प्रचार किया स्मरण रखा। मार्जी, क्या तुम्हें स्मरण है वर्षों पहले संयुक्त राज्य का आक्रमण और अमेरिकन सरकार को फेंकना, और कैसे मैंने कहा जब हमने उन्हें इन स्त्रियों से बचा लिया, उसके बाद वो पेरिस से उठा शराब और महान समय और वो हॉलीवुड में आकर चमका। अब बजाय इसके कि हमें पेरिस भेजकर कि वहाँ से मॉडल लाएं, उन्होंने यहाँ मॉडल लेने के लिए भेज दिया। इसने क्या किया, हम आपको फिल्म के शो में नहीं जाने देंगे, परंतु अब ये टेलीविजन में आ गया है, उसमें चल रहा है और सारी चीजों को भ्रष्ट कर दिया और उसे उस पर चलाया, और आज हम यहाँ हैं और सारी छोटी लड़कियाँ और लड़के सारे टेलीविजन के कलाकारों के समान हैं। ये क्या है, ये मार्ग तैयार कर रहा है। लड़के, एक गंदी स्त्री बहुत सारे लोगों को नरक में भेज सकती है बजाय एक शराबी नगर में आकर मिल जाए, ये ठीक बात है। उस पर ध्यान दें, उसके साथ सड़क पर जाएं, सारे कपड़े उतरे हुए, कोई चिंता नहीं कौन पुरुष है, यदि वो स्वस्थ साधारण पुरुष है, जब वो स्त्री को देखता है तो वो बाध्य है कि उसमें कुछ हो। अब ईमानदारी से मैं चिंता नहीं करता, मेरे पास वर्षों से पवित्र आत्मा था। आप एक स्त्री को नहीं देख सकते और उसकी आदि पोशाक, मैं अपनी कार में छोटी क्रूस रखता हूँ, आप में से बहुतों ने देखी है। किसी ने मुझसे कहा कि आप कैथोलिक हैं, कैथोलिकों को क्रूस पर कब से एकाधिकार मिल गया, क्रूस का अर्थ मसीह है, वे साधारण पुरानी संत सिसिलिया और वे चीजें कैथोलिकवाद के चिन्ह हैं। हम ऐसी चीजों का विश्वास नहीं करते, हम मसीह में विश्वास करते हैं। उनके पास सब प्रकार के मृत लोग हैं, वे आराधना करते हैं, ये प्रेतवाद का उच्च रूप है, यही सब है, मृतकों की आराधना करना, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने उस पादरी से पूछा, मैंने कहा तो फिर क्यों, मैंने उस पादरी से पूछा, मैंने कहा तो फिर क्यों, यदि पतरस पहला पोप था तो, उसने कहा ये ठीक बात है। मैंने कहा तो फिर पतरस ने क्यों कहा कि परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में मनुष्य मसीह यीशु को छोड़ कोई बिचवाई नहीं है, और तुम्हारे पास 5,000 मृत स्त्रियां हैं और हर चीज को आप मध्यस्थ करने वाला बनाते हैं। अब क्या घटित हुआ, आप इसी स्थिति में हैं, उनके पास इस बात के लिए कोई उत्तर नहीं है, ये ठीक बात है। और अब उनकी कुछ शिक्षाएं, उनकी गलत शिक्षाएं, झूठे प्रोटेस्टेंटों को भविष्यद्वक्ताओं का झुंड आसपास आ गया है और ये सिखा रहे हैं कि तुम प्रोटेस्टेंट लोग इसे हजम कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक बात है। नामधारी और तरह तरह के बपतिस्मे और विभिन्न विधियां और बातें जिनमें तुम चल रहे हो, जो बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं है, ये वचन के विरोध में है, तब भी इसके सामने झुके हुए हो, ये सच है। अब इस महिला प्रचारकों के विषय में सुनिए, ठीक है, पहली बात जो होगी मैं चाहता हूँ, पहला तिमोथियस 2:11, अब सुनिए ये यहाँ क्या कहता है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। इसे यहाँ लिखने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं इस बात का उत्तरदायी हूँ कि आपको बताऊँ कि ये यहाँ पर है, समझे। स्त्री को पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, यदि आप कभी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में गए हों और उन्हें देखें, देखा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे या आज्ञा चलाए, पास्टर डीकन या ऐसी ही कुछ, पुरुष पर, देखिए पुरुष पर आज्ञा ना चलाए परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। क्या आप जानते हैं, अब स्त्रियां सुने, आप भली धार्मिक मसीही स्त्रियां, वो सबसे उत्तम चीज है जो परमेश्वर ने पुरुष को दी, या तो वो कुछ भिन्न देता है। जी हाँ श्रीमान, समझे, स्त्री मूल सृष्टि में भी ना थी। स्त्री रचा हुआ उत्पाद नहीं है, वो तो उत्पादन में से बनी है पुरुष के। परमेश्वर मनुष्य को दोनों नर और नारी करके बनाया और उसने उन्हें अलग किया, और मनुष्य के पृथ्वी पर जीवित रहने के पश्चात और पशुओं के नाम रखने के पश्चात और यहाँ लंबे समय तक रहा। उसने आदम की एक और से पसली ली एक उप उत्पाद की तरह और उसे स्त्री को बनाया। पहले आदम फिर उसके बाद हवा बनाई गई। अब ध्यान दें, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। परमेश्वर ने आदम को लिया, शैतान ने स्त्री को लिया। अब इसे सीधा सीधा देखें, ये आज क्या कर रहा है। परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया को देखें, वो यीशु कहेगी, वो मसीह विरोधी मरियम कहेगा। इन आत्माओं को देखें, वे यहाँ पर हैं। सलाम मरियम, परमेश्वर की माता, तू स्त्रियों में धन्य है और मृत्यु के दिन हम पापियों के लिए प्रार्थना करना, आमीन। मरियम से प्रार्थना करते हैं, अरे प्रभु। देखिए, यहाँ आप जाते हैं, स्त्रियाँ शैतान के अधिकार में। मसीह आराधना का उद्देश्य है और केवल एक। आप यहीं पर हैं, यहीं पर। पहले आदम बनाया गया और फिर हवा। आदम बहकाया न गया। और कैसे आप महिला पास्टर डीकन ले सकते हैं? आदम बहकाया न गया परंतु स्त्री बहकाई गई थी। वो वास्तव में उसने नहीं सोचा कि वो गलत थी, परंतु वो थी। स्त्री बहकाई जाकर अपराधनी ठहरी, क्योंकि वे हर बार जब शव यात्रा जब सड़क पर होती है, एक स्त्री इसका कारण हुई। हर बार जब बच्चा रोया, एक स्त्री इसका कारण बनी। हर बार जब कोई मरा, एक स्त्री इसका कारण हुई। हर सफेद बाल स्त्री इसका कारण बनी। हर चीज और मृत्यु एक स्त्री इसका कारण बनी। हर चीज जो गलत हुई एक स्त्री इसका कारण बनी। और तब उसे कलीसिया का अध्यक्ष बना दिया, पास्टर, कभी कभी बिशप। उसके लिए लज्जा की बात है। अब मैं आपसे दूसरा वाला खुलवाऊं, एक मिनट देखिए। अब आइए पहले कुरिन्थियों 14:32 निकालें और देखें कि पौलुस वहाँ क्या कहता है, और तब हम कुछ और देखेंगे, एक मिनट। और तब हम आपको अधिक नहीं रोकना चाहते, इसलिए कि आप लोग बहुत थक जाएंगे और इस प्रातः और आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कितने विश्वास करते हैं कि पौलुस प्रेरणा युक्त एक शिक्षक था? अब स्मरण रखें, पौलुस ये तीमोथियुस को भी लिखता है, समझे। ये अब पहले कुरिन्थियों 14:32, अब हम यहाँ से आरंभ करें और यहाँ से पढ़ना आरंभ करें, 14:34, मैं विश्वास करता हूँ। स्त्रियाँ कलीसिया में शांत रहें। क्या आपने सुना कि उसने क्या कहा? स्त्रियाँ कलीसिया में शांत रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं परंतु उन्हें अधीन रहने की आज्ञा है। क्या उस पर वहाँ हाशिए पर पढ़ने के लिए है? यदि आप पीछे जाएं और देखें, यदि इसमें उत्पत्ति 3:16 नहीं है, जब परमेश्वर ने हवा को बताया, क्योंकि उसने बजाय अपने पति के सर्प की सुनी, वो अपने सारे जीवन उस पर प्रभुता करेगा। कैसे स्त्री आकर पुरुष पर प्रभुता कर सकती है, एक पास्टर होकर या डीकन, जबकि बाइबल ने कहा वो आधीनता में रहे, जैसा कि आरंभ में था। जब परमेश्वर बदल नहीं सकता। आप वचन से एक बात यहाँ और दूसरी बात वहाँ नहीं कहलवा सकते, ये ऐसा नहीं करता। हर समय ये एक सा रहता है। इसलिए आरंभ में जहाँ, इसके पहले कि ये पूरा हो, यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं विवाह और तलाक का मामला आपके लिए स्पष्ट कर दूंगा। मैंने इसे अभी तक इस कलीसिया में नहीं किया है, परंतु उस दुगनी वाचा को देखें। एक कहता है वो विवाह कर सकती है और दूसरे ने कहा वो विवाह नहीं कर सकता है, और ये कहता है या दूसरा। एक मिनट रुकिए और देखिए बाइबल क्या कहती है, जब हम इस पर आते हैं, समझे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे, तुम्हारी स्त्रियाँ कलीसिया में शांत रहें, उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं परंतु उन्हें अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा कि व्यवस्था में भी लिखा है। पुराने नियम में उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि पौलुस ने यहाँ कहा उन्हें नहीं थी। क्या ये ठीक बात है? तुम्हारी स्त्रियाँ शांत रहें, ये आज्ञाकारिता है। अब यदि आप अपने हाशिए पर पढ़ने के लिए देखें, ये वापस उत्पत्ति 3:16 में ले जाता है, समझे। ठीक है, अधीनता जैसे कि व्यवस्था में है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो अपने पति से घर पर पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बोलना लज्जा की बात है। क्या अब प्रत्येक प्रश्न चिन्ह को अपनी बाइबल में देखें, उस पर क्या क्या कारण है पौलुस का ये कहने का कि और इस प्रकार का व्यवहार करें। अब यदि आप कभी उन पत्रियों को पाएं जो कुरिन्थियों ने पौलुस को लिखे, अब आप इन्हें किसी भी अच्छे पुस्तकालय में पा सकते हैं। देखिए, कुरिन्थियों ने पौलुस को लिखा, उन्होंने लिखकर पौलुस को बताया। इन स्त्रियों के मत परिवर्तन करने के पश्चात वहाँ उनके पास देवी थी जो कि डायना कहलाती थी और वो इफिसुस की भी थी और कुरिन्थ के लोगों ने उसकी आराधना भी की क्योंकि ये मूर्ति पूजकों की उपासना थी। और एक दिन उन्हें खेत में स्त्री के आकार जैसा पत्थर मिला। उन्होंने कहा परमेश्वर एक स्त्री है और उसने अपनी प्रतिमा हमें नीचे गिरा कर भेजी है। और उनका मंदिर सुलेमान के मंदिर से बहुत दूर था, उन्होंने इतिहासकारों ने बताया। ओ, ये पूरा संगमरमर था, सोने से जड़ा था, जबकि सुलेमान का मंदिर देवदार से बना था और सोने से जड़ा था, समझे? और वो इससे बहुत दूर था। और वो तब यदि परमेश्वर एक स्त्री था तो क्यों निश्चय ही स्त्रियां उसकी पुरोहित हो सकती हैं? निश्चय ही यदि परमेश्वर स्त्री है तो फिर स्त्री प्रचारक ठीक है, परंतु परमेश्वर एक पुरुष है। बाइबल ने कहा कि वो एक पुरुष था, वो एक पुरुष है, समझे? और यदि परमेश्वर पुरुष था तो इसे पुरुष होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दें, क्या अब उनमें से कुछ स्त्रियां पुरोहित हैं? जब वे पागानवाद से मसीहत में मत परिवर्तित हो गईं, तो उन्होंने सोचा कि वे अपने कार्यस्थल को प्रचारक के समान बनाए रख सकती हैं। इस प्रकार से आ गया, यदि वे वहां डायना के लिए प्रचार करती थीं, तो वे यहां आकर और मसीह के विषय में प्रचार करती हैं। उसने कहा, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? जरा इसे सुने भाई, सेवक गण कैसे कर सकते हैं? 36वां पद, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम्हें पहुंचा? यदि कोई मनुष्य अपने को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझे, केवल भविष्यद्वक्ता ही नहीं, एक आत्मिक विचार का मनुष्य, वो इन बातों को जो मैं तुम्हें लिखता हूँ प्रभु की आज्ञा करके जाने। आप इसका विश्वास करते हैं? परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखा, उसने कहा यदि एक मनुष्य आत्मिक मनुष्य है या एक भविष्यद्वक्ता है, वो इसे लिखे हुए को प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार करेगा। परंतु कहा यदि वो ना माने तो ना माने। देखिए, आप केवल ये कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करते रहना चाहते हैं तो आप उन्हें वैसे ही करने दो, क्योंकि उसने इसे वहीं पर आरंभ होते हुए देख लिया था। और किसी स्त्री ने मुझे बताया, उसने कहा ओ पौलुस तो वो पुराना स्त्रियों से चिढ़ने वाला है, वो स्त्रियों से घृणा करने वाला नहीं था। आप जानते हैं पौलुस अन्य जाति कलीसिया के लिए प्रेरित था। यह देखिए, क्या आप पौलुस को जाने? पौलुस ने क्या प्रचार किया कितने जानते हैं? क्या यही है जो उसने यहाँ कहा? और पौलुस ने कहा, आप कहते हैं अच्छा, अब एक मिनट रुकिए भाई ब्रैनम, एक मिनट, अब हमारा बिशप कहता है ये ठीक है, वे जो सर्वेक्षक हैं संगठन कहता है ये ठीक है, वननेस का बिशप कहता है ये ठीक है, मैं चिंता नहीं करता कि वे क्या कहते हैं, ये गलत है। और मैंने आपको बताया कि हम इसके साथ पूरी तरह से बने हुए हैं। और झूठे भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा यदि कोई मनुष्य स्वयं को आत्मिक जन या भविष्यद्वक्ता समझे तो वो ये जान ले कि जो मैं कहता हूँ ये प्रभु की आज्ञा है, और यदि उसकी आत्मा वचन के साथ गवाही नहीं देती तो वो आरंभ से ही झूठा भविष्यद्वक्ता है। ऐसा कार्य करने के लिए मैं स्त्री प्रेमी से स्त्री घृणा करने वाला ही ठीक हूँ कि ऐसी चीजों को मिलाऊं परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के अध्यादेश के विरोध में? और पौलुस ने कहा, गलतियों 1-8 देखें, पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग का कोई दूत भी कोई और सुसमाचार प्रचार करे जो मैंने तुम्हें प्रचार नहीं किया तो वो श्रापित हो। अब आप इसके विषय में क्या करने जा रहे हैं? अब आप कहते हैं उस बारे में क्या है जहाँ ये कहा गया है तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे योएल में, और जहाँ पत्रस ने पेंतेकोस्त के दिन इसका उल्लेख किया है? ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप जानते हैं पुराने नियम में केवल एक मार्ग था और वही अब है कि कोई भी वाचा में अब्राहम के द्वारा आ सकता है, वही है जिसे प्रतिज्ञा दी गई थी और प्रतिज्ञा पर मोहर खतने के द्वारा थी। आप में से ये कितने जानते हैं? ये परमेश्वर की पुष्टि थी, जैसे कि बैप्टिस्ट भाई ने कहा, भाई ब्रैनम कि हम बैप्टिस्टों ने पवित्र आत्मा क्यों पाया? मैंने कहा तुम्हें ये कब मिला? कहा जिस घड़ी हमने विश्वास किया। मैंने कहा पौलुस ने कहा क्या जब से आप विश्वास में हैं आपने पवित्र आत्मा पाया, समझे? मैंने कहा अब आप बैप्टिस्टों आकर उसमें से पा लो और हम आपसे अनंत सुरक्षा की बातें करेंगे। मैंने कहा परंतु अच्छा आपको इस प्रकार कहाँ मिला, समझे? उसने कहा क्या तुमने इसे पाया जब से तुमने विश्वास किया है? वे विश्वासी थे और उनमें चिल्लाना और आनंद करना और सब कुछ था, तो अभी उन्हें अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पौलुस ने कहा उनके पास नहीं था, समझे? क्या जब से तुम विश्वास में हो पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कुछ होता है। कहा तो फिर तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? उन्होंने कहा हमारा बपतिस्मा हुआ परंतु गलत रीति से, देखिए इसलिए उसे फिर से बपतिस्मा देना पड़ा। ठीक है, अब इस पर ध्यान दें। कि इन स्त्री प्रचारकों ने जब वे अंदर आकर मिल गए, उन्होंने सोचा वे अपना अधिकार लेंगे, परंतु इसके परमेश्वर की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि ऐसा करें। और जबकि हम इस विषय पर चल ही रहे हैं, ये स्त्रियां इसमें देखिए, अब ये कहा, यदि कोई पुरुष तुम्हारे मध्य में जो कि आत्मिक या भविष्य रखता हो तो वो ये जान ले कि जो मैं लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञा है, परंतु यदि वो ना जाने तो वो ना जाने। और यही कारण है कि ये आराधनालय स्त्री प्रचारकों को, स्त्री डीकनों या कुछ भी स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र इस कलीसिया में या कुछ भी अभिषेक नहीं करता, क्योंकि ये पवित्र वचन यहाँ पर है और ये साफ साफ हो गया। अब बाइबल ने कहा कि तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अब भविष्यवाणी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसे देखिए, ये प्रेरणा में कुछ बताना या कुछ पहले से बताना, ये संयुक्त शब्द है, जैसा कि पवित्र करण का अर्थ शुद्ध किया हुआ और सेवा के लिए एक और रखना, समझे, या ये संयुक्त शब्द का अर्थ एक से अधिक बार, जैसे कि हम यहाँ अंग्रेजी में बहुत पाते हैं, जैसे कि हम बोर्ड शब्द कहते हैं। अच्छा, बोर्ड का क्या अर्थ होगा? आप कहते हैं कि भाई इसका अर्थ है कि उसने अपने रहने का भुगतान कर दिया। नहीं, उसका कभी भी अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है उसने एक छेद कर दिया। नहीं, उसने कभी नहीं, उसका अर्थ है उसने उसे उकता दिया। या आप देखिए, केवल एक शब्द और आपको जानना है कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं, समझे। और ये इस प्रकार से है, ये संयुक्त शब्द जहां आपके पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। केवल एक ही मार्ग है जो कि परमेश्वर। इस बैप्टिस्ट ने कहा, ठीक है, हमने पवित्र आत्मा पा लिया। मैंने कहा, तब जब हमने इसका विश्वास किया, मैंने कहा, अब देखिए, उसने कहा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसने कहा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस प्रकार उसने इसे रखा, अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कितने जानते हैं कि ये सत्य है। अब ध्यान दें, कैसे कैसे शैतान उस भाई में ये समझ डालता है। देखिए कितनी सरलता से, अब ये वचन है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पर इसके पहले कि आप प्रवेश करें आपको अभिषिक्त होना चाहिए, आपको पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। लोग कहते हैं तुम क्यों बाहर जाकर लोगों से नहीं मिलते हो। भाई, यदि आप लोगों से बात करने जा रहे हैं या उन्हें सिखाने जा रहे हैं तो अच्छा हो कि आप कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ बने रहें इसके पहले कि आप प्रचार मंच पर आएं। निश्चय ही देखिए, क्योंकि शैतान चालाक है, बहुत चालाक। उसने कहा, अब ध्यान दें, उसने कहा अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये ठीक बात है। उसने कहा, अब इससे अधिक अब्राहम क्या कर सकता था कि विश्वास करे। मैंने कहा, वो केवल यही कर सका। उसने कहा, आप और कितना क्या कर सकते हैं, या कोई भी, कि केवल विश्वास करे। मैंने कहा, हम भी यही कर सकते हैं। परंतु देखिए भाई, तब परमेश्वर ने मिलाया यानी अब्राहम के विश्वास को मान्यता दी, उसने उसे मोहर दी, खतने का एक चिन्ह, वाचा की एक मोहर के समान उसने उसे दिया। देखिए, उसने कहा, अब्राहम, अब मैं तेरे विश्वास को मान्यता देता हूँ, इसलिए अब मैं तुझे एक चिन्ह देने जा रहा हूँ कि मैंने तुझे ग्रहण किया। इसलिए उसने अब्राहम का खतना किया और वो वाचा की एक मोहर थी। और अब इस दिन में, अब एक स्त्री इस वाचा में नहीं हो सकती, केवल एक विवाहित स्त्री। खोजिए, नारी का खतना नहीं हो सकता, इसलिए इसे भीतर आना ही था। इसलिए वो और उसका पति एक है, वे अब दो नहीं हैं, वे एक हैं। कितने ये जानते हैं, वचन ऐसा कहता है। इसलिए विभाजित होने से वो एक हो जाते हैं। और यहाँ आगे बढ़ते रहिए, और यहाँ तिमोथी में देखिए, और वही बात कही गई है, कहा बालक जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वो विश्वास और पवित्रताई में पूरे संयम के साथ बनी रहे। अब परंतु तब पुराने नियम का खतना देह में था, परंतु इस नए नियम में योएल ने कहा, मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अब भविष्यवाणी शब्द का अर्थ शिक्षा देना नहीं है। भविष्यवाणी का अर्थ या तो प्रेरणा में अनुभव को बताना या होने वाली किसी बात को पहले से बताना। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में भविष्यद्वक्तनी थी, वो कभी भी भवन में, कलीसिया में, भक्तगणों के मध्य शिक्षक के समान नहीं बोल सकी। परंतु देखिए, अन्ना और उनमें से बहुत सी मंदिर में वे वहाँ भविष्यद्वक्तनी थी, और मरियम एक भविष्यद्वक्तन थी, या इस प्रकार कुछ, उसके ऊपर आत्मा था, ये सत्य बात है, परंतु उसका अपना एक सीमित स्थान था। आज स्त्रियाँ भविष्यद्वक्तनी हो सकती हैं, निश्चय ही, परंतु शिक्षक सिखाने वाली नहीं, और आदि आदि। यहाँ पीछे मंच पर यदि आप करते हैं तो आप स्वयं बाइबल को विरोधात्मक बनाते हैं। बाइबल एक बात यहाँ पर और दूसरी बात वहाँ पर नहीं कह सकती, इसे हर समय एक ही बात कहनी है, या फिर परमेश्वर का वचन नहीं है। समझे? इसलिए तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, जिसका अर्थ वे या तो पहले से बताएंगे या गवाही देंगे। अब आप इसे देखें और आप बाइबल का शब्द कोश लें और देखें कि ये ठीक है कि नहीं। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अब बाइबल उस स्त्री के विषय में भी बोलती है जो स्वयं को दर्शाती है या दावा करती है कि वो ये दोनों के लिए कार्य करेगा, कैथोलिक कलीसिया और इस छोटे विषय के साथ भी कार्य करेगा जिसके विषय में अब हम बोल रहे हैं। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालें और लगभग दूसरे अध्याय में और 20वां पद, जबकि अब हम इसे बंद करने पर हैं, ताकि आप यहाँ पर ध्यान दे सकें और देखें कि ये बात कितनी शैतानियत से भरी हो सकती है। इन अंतिम दिनों में बोलने के द्वारा क्या घटित होगा कि कैसे ये स्त्री कैसी होगी। स्मरण रखें, कैथोलिक कलीसिया एक स्त्री है। हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा? अब इसे सुने, ये कैसे कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:20। अब दृढ़ता से ये थुआथिरी कलीसिया से बोल रहा है, अब विरोध करते हुए, जो कि कलीसिया युग का मध्यकालीन है, अंधेरे युगों में होकर निकला। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। समझे? अब यदि आपने कभी ध्यान दिया हो इन कलीसियाई कालों पर, ध्यान दें, तब हम बंद करेंगे और तब प्रातः हम इन दूसरी चीजों को लेने जा रहे हैं। ध्यान दें, यहूदी आराधनालय के अंदर उस सोने के दीवटों, भेंट की रोटियां और आदि आदि, वहां 7 सोने के चिरागदान थे, आप सब ये जानते हैं, देखा? और वहां 7 कलीसियाई काल हैं, जो कि 7 कलीसियाई कालों के समान बोलते हैं। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य 1 में ध्यान दें, हम पाते हैं कि यीशु 7 कलीसियाई कालों के मध्य में खड़ा है, वो 7 सोने के दीवट। जब वो घूमा तो एक मनुष्य के पुत्र के सरीखा दिखा, जो वस्त्र पहने हुए था। ये कैसा था? ये दीवटों में दुल्हन खड़ी हुई थी, निकाली हुई। अब पुराने नियम में वे इन्हें लेंगे, इस एक दीवट को, और इसे जलाएंगे, और दूसरे दीवट को लेंगे और उस वाले से लौ लेंगे, फिर उस वाले से लौ लेंगे, और इस प्रकार से जब तक कि सारी 7 दीवट नहीं जल जाती। यदि आप आरंभ में ध्यान देंगे, जब परमेश्वर ने यहूदियों से व्यवहार करना आरंभ किया था और वे सुनहरे युग से होकर निकले, और तब यहूदियों का अंधकार के युग का व्यवहार परमेश्वर का यहूदियों के साथ रहा, वो आहाब का राज्य था। यदि आप ध्यान देंगे वहाँ उन कलीसियाई युगों को पढ़ते हुए, वो इस पर फिर से वापस आता है। उसने कहा अब कुछ बातों से पहले, और कहा अब ठीक इस अंधकार युग में वहाँ 1500 वर्ष थे, या आहाब का समय पहले, और यहूदी उनका सबसे अधिक अंधकार का युग, जब आहाब ने इजाबेल से विवाह किया और मूर्ति पूजा को इसराइल में लाया, और सब लोगों से आहाब और इजाबेल के देवता की उपासना करवाई। आपको स्मरण है, उन्होंने उपवन रखे और परमेश्वर की वेदियां उतार दी, और इलीशा चिल्लाया कि केवल वही एक था, और परमेश्वर के पास 700 थे जिन्होंने बाल के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके थे। आपको ये याद है? यहाँ चुनी हुई कलीसिया का प्रतीक है जो आ रही है। वहाँ देखिए ये कैसे है। अब इस कलीसिया में यदि आप पहली कलीसिया पर ध्यान देंगे, पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया एक महान कलीसिया थी। उसने कहा तुझमें अभी भी जीवन है, और यदि आप प्रत्येक कलीसिया पर ध्यान देंगे तो वो धुंधली और धुंधल की होती जाती है, जब तक कि वो थुआथीरा तक नहीं पहुंच जाती। तब 1500 वर्ष, तब ये दूसरी ओर निकल कर आती है, और आपके पास बस थोड़ा सा उजियाला है, जो तेरे पास है उसमें मजबूत हो जा, नहीं तो तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। और तब ये आगे बढ़ते हुए फिलेडेल्फिया कलीसियाई काल तक आता है, और तब लुदिकिया कलीसियाई युग में आता है। अब यहाँ सुंदरता है। ओ प्रभु, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है भाई स्मिथ, देखिए इसे देखिए। अब इस कलीसियाई काल में जिसे हमने देखा, अब इसे देखिए। पहली कलीसियाई युग इफिसुस था, इफिसुस कलीसियाई काल। अब उनमें से प्रत्येक कलीसियाई काल, जब तक वे इन 1500 वर्षों तक पहुँचे, यदि आप ध्यान देंगे, अब इसे पढ़ें, जब आज रात्रि आप घर जाते हैं, यदि आपके पास समय है, या जल्द ही प्रातः है, इससे पहले कि आप आराधनालय में आए, प्रकाशित वाक्य का 1, 2, 3 अध्याय, आप उनमें से प्रत्येक कलीसिया कालों में पाएंगे। उसने कहा तेरे पास थोड़ी सी सामर्थ है, और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जब तक कि वो अंधकार में थुआथीरा के 1500 वर्ष तक नहीं पहुंचा, तब वो दूसरी ओर आता है और कहा तू नाम का तो जीवता है, परंतु तू मरा हुआ है। और ये, और इनमें से कोई दूसरे कलीसियाई काल नहीं जो, या फिलेडेल्फिया कलीसिया काल, उस नाम को फिर कभी नहीं लिया, उस नाम को नहीं पाया, क्योंकि इस समय की अवधि में वो बाहर निकल गया। अब हम इसे कैसे गलत शिक्षा पर रख सकते हैं? ठीक वहाँ आपको दर्शा दिया है कि ये माँ है, वो कैथोलिक कलीसिया, सबकी माता, वो कैसे है, माता बाबुल का भेद। और देखिए ये यही है, ये कलीसियाई काल, जब तक वो बाहर आती है, उसके पास थोड़ा सा उजियाला है, तब वो और धीमी धीमी होती जाती है और तब वो यहाँ संस्था में आ जाती है, ये 1500 वर्ष। अब वो यीशु मसीह की कलीसिया के समान बाहर आती है, परंतु कैथोलिक कलीसिया के समान। लूथर क्या होकर बाहर निकले? जैसे लूथरन कलीसिया। बैप्टिस्ट क्या होकर बाहर निकले? जैसे बैप्टिस्ट कलीसिया। उसका नाम नहीं, दूसरा नाम। आपके पास एक नाम है, क्योंकि कोई दूसरा नाम स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया जिससे आप बच जाएं। केवल यीशु मसीह का नाम। तेरे पास नाम है कि तू जीवता है, परंतु तू मरा हुआ है, ये नामधारी के साथ है। ओ, मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ और आप मरे हुए हैं। ओ, मैं बैप्टिस्ट हूँ और आप मरे हुए हैं। आप केवल तभी जीते हैं जैसे ही आप मसीह यीशु में जीवित आते हैं, ये ठीक बात है। और आपका पानी में झूठा बपतिस्मा, गलत बपतिस्मा, छिड़काव, उंडेलना, बजाय डुबाने के पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं, बजाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के, बाइबल बता रही है सारी झूठी चीजें सीधे सीधी भीतर आ रही हैं, जितनी भी हो सकती हैं मिलाई जा रही हैं, और यहाँ हम उन सब बातों को उनके साथ सहन कर रहे हैं। भाई, मेरी कलीसिया इस प्रकार विश्वास करती है, परंतु बाइबल ये कहती है, समझे, ऐसी कोई बातें नहीं है, एक कोई चीज नहीं है। और बाइबल में किसी भी स्थान में नहीं है कि वे जुबान बाहर निकालें और प्रभु भोज लें और पादरी दाखरस पी ले और इसे पवित्र आत्मा कहे। और बाइबल में उन्होंने कभी भी हाथ मिलाकर और अपना संगति का सीधा हाथ दिया और इसे पवित्र आत्मा कहा? कभी भी कोई उठकर और ये कहता है, अब मैं विश्वासी हूँ और पवित्र आत्मा पाता है? यदि ये हुआ तो यहाँ प्रेरित 2 में मार्ग है, पढ़ना ही होगा। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया, वहाँ रोमी पादरी आया और उसका कॉलर गोल था। उसने आकर कहा, अब सब अपनी अपनी जुबान बाहर निकाल लो और पवित्र आत्मा यानी यूक्रिस्ट भोज लो, पहला भोज। क्या ये ऐसे नहीं होता? प्रेरित 2 पढ़ते हैं तो आप प्रोटेस्टेंट हो, वैसे ही खराब हो। उस दिन वापस आओ। अब जब हम आप मेथोडिस्टों के पास आते हैं, उन्हें दाहिनी ओर रखते हैं, उन्हें संगति के लिए दाहिना हाथ देते हैं और परख अवधि के 6 महीने। आप इसे प्रेरित 2 में कहाँ पढ़ते हैं? देखा, आपको ये कहाँ मिल रहा है? समझे, ये कहा है जब वे सब एक स्थान में थे और एक ही संगति में। वहाँ कभी भी कोई बिशप नहीं आया और ये किया, और वहाँ कभी भी कोई पादरी आकर ये नहीं किया, परंतु वहाँ आंधी का सा जोरदार एक शब्द आया और इससे सारा घर भर गया जहाँ वे बैठे थे। इस प्रकार से उन्होंने इसे प्राप्त किया। जी हाँ श्रीमान, जोरदार आंधी का शब्द महिमा से आया, सड़क से या कहीं नामधारी से नहीं। तेरे पास एक नाम है कि तू जीवता है, परंतु तू मरा हुआ है। देखिए, आपके मतसारों और नामधारियों ने परमेश्वर को ऐसे दूर हटा दिया, यहाँ तक कि हम ये विश्वास करते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन व्यतीत हो गए। ये एक झूठा भविष्यद्वक्ता है जो ये कहता है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता आपको ये बताता है कि आप हाथ मिला सकते हैं और पवित्र आत्मा पाएं। ये झूठा भविष्यद्वक्ता है जो आपको ये बताता है, जब आप विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा पाते हैं। ये झूठा भविष्यद्वक्ता जो आपको बताता है कि बजाय बपतिस्मे के आपके ऊपर उंडेलना और छिड़कना चाहिए। ये झूठा भविष्यद्वक्ता है जो आपको बताता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, जबकि बाइबल में ऐसा पवित्र लेख नहीं है। ये ठीक बात है, बाइबल में कोई लेख नहीं है जो बपतिस्मों के लिए बताए, जबकि किसी का भी बपतिस्मा जो भी कभी हुआ वो केवल यीशु मसीह के नाम में हुआ। केवल यूहन्ना के चेले और उन्हें आकर और फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा ताकि पवित्र आत्मा पाए। ये ठीक बात है, ये ओनली जीसस की शिक्षा नहीं है। ओनली जीसस की शिक्षा को मैं जानता हूँ, वो ये नहीं है, ये बाइबल की शिक्षा है। ये ठीक बात है, परंतु आप यही हैं। आप इसके साथ क्या करते हैं? ये आपकी माँ है, ये आपके उन मतसारों की माता है। अब यदि आप पीछे बाइबल में देखें और मुझे बताएं कि कहाँ किस पर कभी छिड़काव किया गया, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, मुझे बताएं कहाँ किसी भी व्यक्ति पर बाइबल में छिड़काव किया गया। मुझे बताएं कहाँ बाइबल में एक भी व्यक्ति पर कभी पानी उंडेला गया हो पापों की क्षमा के लिए। इसका उल्लेख करें, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? यदि आप पाते हैं तो मेरे पास आए, तो मैं इस सड़क पर अपनी पीठ पर यह चिन्ह लगाकर चलूंगा और कहते हुए, एक झूठा भविष्यद्वक्ता, मैं गलत था। या आप समस्त बाइबल में एक भी स्थान में ये पाएं जहां कभी भी कोई जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो, जिस प्रकार से आप 80% ने बपतिस्मा लिया है। मुझे एक भी पवित्र लेख ढूंढ कर दें जहां कभी भी किसी का इस प्रकार बपतिस्मा हुआ हो, और मैं अपनी पीठ पर झूठा भविष्यद्वक्ता ये चिन्ह लगाऊंगा और इस प्रकार इसके साथ सड़क पर चलूंगा। और मुझे दिखाएं जहां कहीं भी किसी का बपतिस्मा हुआ, नई कलीसिया में आकर फिर से बपतिस्मा नहीं लेना पड़ा, केवल यीशु के नाम में नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये ठीक बात है, देखिए कि ये ठीक है कि नहीं। और यहाँ ये क्या है? वो वेश्याओं की माता थी। किस चीज ने उसे वैश्य बनाया था? किसने उसे व्यभिचारिणी बनाया था? उसकी शिक्षा ने। किसने उन्हें वैश्य बनाया था? उसकी शिक्षा ने। और यही कारण है कि हम उनके नामधारियों को सहन नहीं कर सकते और उनके धर्म सिद्धांतों को। हम इस बाइबल के संग स्पष्ट रहते हैं। मैं नहीं जानता कि आप इसे कितने भली प्रकार से जीते हैं, परंतु आपको ये सिखाया गया है। जो भी है ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। मैं इसे आपका जीवन नहीं बना सकता, मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ कि ये सत्य है। इसलिए हम नामधारी नहीं हैं। मैं अपनों को नहीं चाहूँगा कि इन चीजों से अपने आप को दूषित करें, जैसे कि ये है कि किसी प्रकार के धर्म सिद्धांत पर घुटने टेक दें। इससे तो भला मैं प्रभु के लिए थोड़े से ठुकराए लोगों के साथ अपना मार्ग लूं। मैं वचन के सामने निर्मल और शुद्ध रहना पसंद करूंगा और वही स्थिर रहूंगा, और कहते हुए कि मेरे वस्त्र पर किसी मनुष्य का लहू नहीं है। यही कारण है कि हम ब्रणम आराधनालय में टिके हुए हैं। यही कारण है हम असेंबलियां नहीं हैं। इसी कारण हम वननेस नहीं हैं। इसी कारण हम ओनली जीसस नहीं हैं। इसी कारण हम मेथोडिस्ट नहीं हैं। इसी कारण हम बैप्टिस्ट नहीं हैं। ये यहाँ एक छोटा सा आराधनालय है। हमारा कोई भी नामधारी नहीं है। हम मसीह में स्वतंत्र हैं। इसी कारण हम वैसे ही स्थिर रहते हैं। और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। अब हम आपको बता सकते हैं कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं। आपको बताते हैं हम क्यों पैरों को धोते हैं। हम क्यों सदस्यों को इसे नहीं लेने देते यदि हमें मालूम हो कि वे पाप में हैं। और इसी कारण इस पिछले दो या तीन सप्ताहों में मैं एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जा रहा था, जबकि आपके मध्य में छोटे छोटे विवाद भी थे। आसपास जा रहा था, एक दूसरे से नहीं बोलेगा, सड़क पर एक दूसरे के पास से होकर निकल जाएगा, मुंह फेर लेगा। आपके लिए लज्जा की बात है। इसके दूसरी ओर कौन प्रभु के उस आशीषित प्याले को लेगा? वेदी यहाँ है। और कारण कि आप भाइयों और बहनों और वे टेलीफोनों और एक दूसरे के पास घूमते फिरते हैं, आप मसीह कहलाने के योग्य नहीं है जब आप इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप उन टेलीफोनों से अलग रहें। यदि आप किसी के विषय में भली बात नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बात ना करें। स्मरण रखें, परमेश्वर आपको उत्तरदायी ठहराएगा। जब तक आप में इस प्रकार का आत्मा है, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हैं। और यदि आप अनुभव नहीं करते, यदि व्यक्ति गलती पर है उसके पास जाएं, मेल मिलाप करें। यदि आप मेल मिलाप नहीं कर सकते तो अपने साथ किसी को ले लें। कोई आश्चर्य नहीं परमेश्वर अपनी कलीसिया को अनुशासित नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके कि टेलीफोनों पर और इस विषय में बातें करें कि क्या हुआ और छोटे छोटे संप्रदाय और प्रकार आदि आदि, बजाय ये करने के आप वो क्यों नहीं करते जो बाइबल कहती है। यदि कोई भाई गलती में पड़ गया, उसके पास जाएं और देखिए यदि आप उसे फिर से वापस नहीं मिला सकते हैं। अच्छा, अब उसने मेरे साथ किया, मैं चिंता नहीं करता कि उसने क्या किया है। जो भी है उसके पास जाएं। मैंने नहीं कहा कि वो आपके पास आए। यदि वो गलत है तो उसके पास जाएं। आप कहते हैं कि वो गलती पर था, उसे मेरे पास आना चाहिए। ये बाइबल ने क्या ऐसा नहीं कहा? बाइबल ने कहा कि तू उसके पास जा, यदि वो गलत है तो तू उसके पास जा, और तब यदि वो तेरी ना सुने तो फिर किसी को गवाह करके ले जा, और तब यदि वो गवाह को भी ना देखे तब कहे अब मैं आपके पास्टर को लूंगा। तब आप उससे कहें कि अब मैं कलीसिया को बताने जा रहा हूँ, और अब से 30 दिन के बाद यदि भाई आपने ये ठीक नहीं किया, ये भाई आपको यहाँ फिर से फेर कर वापस लाना चाहता है और आप इसे नहीं करेंगे, और यदि आपने इसे 30 दिन के अंदर ठीक नहीं किया, तो फिर क्या होने जा रहा है कि आप हम में फिर नहीं गिने जाएंगे। बाइबल ने कहा यदि वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों का ऐसा जान। आप देखिए, जब तक वो भाई कलीसिया की सुरक्षा में है तो मसीह का लहू उसकी रक्षा कर रहा है। यही कारण है कि हम कलीसिया को जैसी वो चल रही है वैसे ही नहीं चलने देते। अब मैं ये बैप्टिस्ट की शिक्षा है, बैप्टिस्ट कलीसिया की या यहाँ ब्रणम आराधनालय की, यदि आप इसे करेंगे। देखिए, क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ आकर कहते हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति लियो और मैं, आपको ये कहना है, मैं कहता हूँ कि अरे उसने मुझे गलत कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता और मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो तो इस कलीसिया का सदस्य है, वो एक मसीह हो गया, वो यहाँ सामने आकर मेरे साथ प्रभु भोज लेते हैं और हमारा प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा हुआ है, एक दूसरे के साथ सही सही चलते हैं। तब कुछ घटित हो गया। ये मनुष्य नहीं, 90% समय ये शैतान लोगों के मध्य में होता है। ये लोग नहीं, ये शैतान है। और जब तक आप शैतान को ये करने देते हैं, आप अपने भाई को हानि पहुंचा रहे हैं। ये ठीक बात है, लियो और मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, हम जाकर इसे ठीक करें। यदि आप कुछ ऐसा देखते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि हमारे पास आएं और कहें, तुम दोनों लड़को यहाँ आओ और एक साथ मिलकर हम इन बातों को सही करने जा रहे हैं। अब या तब यदि ये बात वहाँ आती है तो मालूम करने के लिए आओ, हम यहाँ पर हैं। पहली बात मैं कहता हूँ कि यदि हम सहमत नहीं हो सकते हैं तो आप इसी प्रकार आराधनालय में आएं, और तब जब तक आप इस विषय में कुछ नहीं करते हैं ओ प्रभु यीशु का लहू हम दोनों की रक्षा करता है, समझे। परंतु तब वो पुराना कैंसर दूसरे कैंसर को आराम करेगा, और वो कैंसर दूसरे कैंसर को आराम करेगा, और पूरी कलीसिया में सारा मामला बीमार हो जाएगा। तब आप एक स्थान में आते हैं, आप कलीसिया में आते हैं, और बस ठंडे से आपको एक द्वारपाल को लेना होगा कि आकर उस हिमलम को तोड़े इसके पहले कि मंडली भीतर आ सके। अब आप जानते हैं कि ये ठीक बात है, और ठंडे कोई आसपास बैठा है आप जानते हो, और बस कुछ नहीं बोलता। हम बहुत ही आत्मिक हुआ करते थे। तो भाई क्या हो गया, आप तो बढ़िया चल रहे थे, क्या मामला था? देखिए, पापों ने आकर आपको अलग कर दिया। भाई परमेश्वर आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब इस चीज को ठीक कीजिए। मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं थी, लियो के साथ कोई गड़बड़ी ना थी, ये तो शैतान हमारे मध्य में आ गया। ये ठीक बात है, मामलों को ठीक करो, उसके पास जाओ। तब यदि वो ना सुने या मैं ना सुनूं, ये चाहे जैसा भी हो, तब इसे कलीसिया को बता दें। यदि वो 30 दिन के भीतर कलीसिया में मेल मिलाप करने के लिए नहीं आता है, तब वो यीशु की सुरक्षा से बाहर लाया जाता है, हम उसे छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। तब देखिए क्या घटित होता है, तब परमेश्वर ही अनुशासित करे। आप अपने हाथ हटा लें, जो सबसे अच्छा आप कर सकते थे आपने किया। तब कुछ समय के लिए परमेश्वर इसे ले ले, वो उसे शैतान को सौंप देगा, तब वो आएगा। यदि वो नहीं आता तो उसका जीवन थोड़े समय का है। और बाइबल में आपको स्मरण होगा जहाँ एक भाई जो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था, कितनों को ये मामला याद है, और वो अपने भाई के साथ रहता था और वे इसे ठीक नहीं कर सके। पौलुस ने कहा उसे नष्ट होने के लिए शैतान को सौंप दो। आप ये दूसरे ग्रंथियों में पाते हैं, वो ठीक हो गया। मेरा एक भाई है, मेरा एक अच्छा मित्र है, मैं यहाँ उसका नाम लेना पसंद करूँगा, वो प्रचारक भाई है, और ये प्रचारक भाई उसका नाम भाई रसमुसेन है। बहुत से सेवकगण आज रात्रि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका नाम आपके कागजों में है। ये वही अंतरीय नामधारियों शिकागो में से है, और देखिए उसका लड़का सेवक था, उसने जाकर कैथोलिक लड़की से विवाह किया और इस प्रकार से आरंभ किया, और वो ये वो उधर उधर कर रहा था, और वो सब किसी परेशानी में पड़ गया। और उसका पिता उसके पास गया, कहा पुत्र देखो क्या आप अपने पिता से मेल मिलाप करने जा रहे हो? उसने उसके पिता ने कलीसिया से पवित्र शोर करने वाले बुलाए। उसने कहा आप देखो क्या आप इस कलीसिया के साथ वो बातें ठीक करने जा रहे हो? उसने कहा पिता आप मेरे पिता हैं और मैं आपके साथ किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, चला गया और वो एक डीकन को लेकर उसके घर गया। कहा वैसली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहा क्या तुम कलीसिया के साथ मामले को ठीक करने जा रहे हो? और उसने उसे दो इस प्रकार के उत्तर दिए। कहा वैसली स्मरण रखो मैं उस कलीसिया का पास्टर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, परंतु मैं वो करने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है। मैं आपको 30 दिन दे रहा हूँ कि कलीसिया के साथ मामले को ठीक कर लो, या फिर हम आपको परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल देंगे। तुम मेरे अपने पुत्र हो, वो मेरा बचाने वाला है। कहा मैं आपसे प्रेम करता हूँ और तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वैसली मैं तुम्हारे लिए अभी भी मर सकता हूँ, परंतु तुम्हें परमेश्वर के वचन के साथ ठीक होना होगा। देखा, कहा मैं पास्टर हूँ, मैं उस झुंड का चरवाहा हूँ, यदि तुम मेरे बालक हो या तुम मेरे जो भी हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना होगा। यदि तुम ये नहीं करते हो तो फिर मैं चरवाहे के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। लड़के ये पास्टर है, ये मनुष्य है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? ये एक मनुष्य है। उसने ये अपने लड़के से कहा कि उसने उसे दुख पहुंचाया है। उसने कहा परंतु कहा क्या तुम किसे दुख पहुंचाने जा रहे हो, मनुष्य को या अपने बचाने वाले को? इस प्रकार उसने कहा। तब हम आगे बढ़ गए और कहा वो ये नहीं करेगा, और मैंने कलीसिया को बताया और कहा मेरा अपना पुत्र वैसली उसने इस मामले को मेरी सुनने से इनकार कर दिया, उसने डीकन की सुनने से इनकार कर दिया। भाई अमुक अमुक आप लोग इस बात के गवाह हैं। हाँ मैं हूँ। ठीक है, 8 बजे अगले रविवार अब से 4 सप्ताह बाद यदि वो अपने को इस कलीसिया के साथ सुधार करके नहीं मिलाता, तो हम वैसली को निकालते हैं, मेरा पुत्र शैतान को, कि उसकी देह को नष्ट करे। ये लहू यीशु मसीह का लहू, और आगे को ये कलीसिया उसकी सुरक्षा नहीं करती। उस रात्रि आकर प्रचार मंच पर खड़े होकर कहा उसके पास 2 मिनट और हैं। समय आया, उसने कहा अब जैसा कि मेरा पुत्र वैसली रसमुसेन और कहा इस भक्त मंडली और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जो कर सकते थे हमने किया, आपके वचन और आदेश के अनुसार आपका पुत्र हमारा बचाने वाला वैसली हमें छोड़ कर चला गया। हम अब ये कलीसिया मेरे साथ, मैं अपने लड़के को शैतान को देता हूँ उसके शरीर को नष्ट करने के लिए, ताकि उसका प्राण बच जाए। यही कहा गया था। 1-2 सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ, संभव है 1 महीने या 2। एक रात्रि वो वैसली बीमार हो गया, और जब वो बीमार हुआ तो और बीमार होता चला गया। उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आकर उसकी जांच करी और उसे 105 बुखार था, और कोई कारण ना मिला, बस बीमार होता चला जा रहा था। डॉक्टर ने कहा लड़के मैं नहीं जानता तुम्हें क्या हो गया। वो नहीं जान पाया कि क्या करे। कहा अच्छा तो फिर विशेषज्ञ को बुलाओ। उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाया और विशेषज्ञ भीतर आया। वे उसे अस्पताल ले गए और उसकी जांच की और सब कुछ उसने कहा। लड़के मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और बस मरने वाला सा दिख रहा था। उसकी पत्नी वहाँ खड़ी रो रही थी और सब कुछ इस प्रकार से, और बालक पलंग के पास खड़े थे और हर कोई इस प्रकार से। उसने कहा बस अब वो जा रहा है। कहा कि उसकी नब्ज और सांसें लगातार गिरती जा रही हैं। उसने कहा पिता को बुलाओ। ओ हाँ, इसे इस प्रकार करना चाहिए, यही है, पिताजी को बुलाओ। और उसका पिता उसे तुरंत देखने के लिए अस्पताल पहुँचे। उसने कहा पिताजी अब मैं बोल नहीं सकता, परंतु परमेश्वर मेरे शब्द सुन सकता है। मैं हर बात को ठीक करूंगा, मैं इसे सुधारूंगा। हाँ मैं सुधारूंगा, हाँ श्रीमान भाई। और तब उसकी सांस ठीक वापस आने लगी। और अगले रविवार वो कलीसिया के सामने था। उसने कहा मैंने कलीसिया की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने पाप किया है। मैंने पास्टर की बात सुनने को मना कर दिया, मैंने डीकन की सुनने को मना कर दिया, और कहा मैं कलीसिया से विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे उस बुराई के लिए जो मैंने इस प्रकार की। कहा कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि वो ठीक हो गया। जी हाँ, यही है जो होना चाहिए। देखा, समझे आप? यदि आप केवल इसे परमेश्वर की विधि से करेंगे, समझे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। हम एक बोर्ड की सभा करते हैं और हम कहते हैं अच्छा अब क्या हमें करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आराधनालय, परंतु मेरा अर्थ हम प्रोटेस्टेंट लोग, हमारी एक बोर्ड की सभा है। और आप लोग जोन्स के विषय में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं हमें उसके साथ करना चाहिए? मैं सोचता हूँ उसने मेथोडिस्ट को अच्छा सदस्य बनाया है बजाय कि वो हमें बनाए। आप इसी स्थिति में हैं, जो कि गलत है। यही कारण है कि हमें उनके रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए, और हमें किसी बिशप को बुलाना चाहिए था या कुछ। आप इस प्रकार क्या कहते हैं, इस पेंटेकोस्टल कलीसिया जिले का व्यक्ति जिला प्रेस्बिटर को बुलाना चाहिए कि व्यक्ति का चरित्र देखे। बाइबल हमें बताती है कि क्या करना है। यही कारण है कि हम उनके नामधारियों के संग मूर्ख नहीं बनते, हम उस चीज से स्वतंत्र रहते हैं। आमीन। मुझ पर गुस्सा ना हो क्या आप हैं? आप ये ना करें। संभव है कल रात्रि मेरे पास कुछ जबरदस्त अच्छे प्रश्न आएंगे, परंतु हम ये ठीक बात है स्मरण रखें। नहीं, मैं ये अब कहता हूँ आप लोग जो विभिन्न नामधारी कलीसियाओं में से हैं, आपका नामधारी भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मसीही नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका नामधारी क्या वहाँ हजारों अच्छे मसीही नहीं हैं। मैं ये कहने का यत्न कर रहा हूँ कि हम क्यों नामधारी नहीं हैं, क्योंकि मैं इसका पक्ष नहीं लूंगा। नहीं श्रीमान, निश्चय ही मैं नहीं लूंगा। ना ही ये बताने का यत्न कर रहा हूँ कि क्या करना है। यदि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो मैं इसे वैसे ही प्रचार करूंगा जैसा उसने इसे करने को कहा। ये इसी प्रकार से इस बाइबल में लिखा है, तो फिर यही है, इसके लिए परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। परंतु यदि मैं भेड़ियों को आता हुआ देखता हूँ या शत्रु को आता हुआ देखता हूँ, और मैं उन्हें चेतावनी देने में असमर्थ हूँ, तो परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा। परंतु यदि मैं आपको चेतावनी दूं, तो फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, समझे। स्मरण रखें, अंत में बड़ा कठिन समय आएगा। मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाला होगा, शेखीबाज, घमंडी, निंदक। देखिए निंदक, ओ वे मूर्खों का झुंड हैं। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कोई पुराना झूठा भविष्य रखता है। अब हम जानते हैं कि हमारी स्त्रियां वैसे ही समझदार हैं जैसे हमारे पुरुष। मैं इसमें जरा भी विवाद नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर की बाइबल ने कहा कि उसे प्रचार मंच से परे रखो। मेरे लिए यही पर्याप्त है। देखिए ये ठीक बात है, ठीक है, समझे। और कहा अच्छा अब हमारे नामधारी में आपके यहाँ आराधनालय जैसे भले लोग हैं। मैं इसमें जरा भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु बाइबल नामधारी को दोषी ठहराती है, ये ठीक बात है। और इस प्रकार से अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कलीसिया में अच्छे सदस्य नहीं है। ये बहुत ही शानदार है, वे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोगों में से मैं उनसे मिला हूँ, कैथोलिक और उन सब में वे सारे मैं अच्छे सदस्यों से मिला हूँ। और मित्र जिस प्रकार से हम इसे सामने ला रहे हैं, यदि प्रभु ने चाहा तो अगले कुछ अध्ययनों में हो सकता है मैं आपको कल प्रातः बताऊं कि हम कल दोपहर बाद सभा चलाएंगे कि नहीं। देखिए इसे निकालने के लिए कारण, हम जो इसे करने का यत्न कर रहे हैं, मैं इसे विशेष स्थान पर लाना चाहता हूँ। अब यदि आप अपने साथ किसी को लाना चाहते हैं, तो आपका ऐसा करने में स्वागत है। परंतु अब स्मरण रखें, यहाँ से गलतियाँ ढूंढते हुए ना निकलें या आएं। मैं केवल अपने भक्त मंडली से बातें कर रहा हूँ, आप समझे। मैं इसे अपनी मंडली के बाहर प्रचार नहीं करता, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति का कार्य है, वो उस झुंड का चरवाहा है, और मैं तो केवल पीछे उत्पत्ति में, वो इसे उसमें से निकालेगा। और देखिए कि ये कहाँ है। अब हम वापस उत्पत्ति में जा रहे हैं कि ढूंढें कि क्यों अवैध संतान प्रभु की सभा में 14 पीढ़ियों तक प्रवेश ना करेगी। ये कैसे लेते हैं आप, उस पाप को समाप्त होने में 400 वर्ष लगते हैं। हम कैसे ये ढूंढने जा रहे हैं कि कैसे माता पिता का अधर्म बालकों और बालकों पर आता है, ये उत्पत्ति में कैसे आरंभ हुआ और आदि आदि, और तब आप देखेंगे कि ये कैसे है, पीछे की ओर जाता है। परमेश्वर पृथ्वी के रचे जाने से पहले, इसके पहले कि एक भी परमाणु फटता, इसके पहले कि ज्योति का कोई कण अस्तित्व में आता, परमेश्वर प्रत्येक सृष्टि को जानता था और हर चीज को जो कभी पृथ्वी पर आती। क्या कोई यहाँ है? आप व्याख्या नहीं कर सकते कि वचन क्या है और उसको तोड़े और कहें कि इनफाइनाइट अनंत शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कि आप अपने कैमरे को अनंतता यानी आकाश की ओर घुमा दें, ये वहाँ से आगे है, बस यही है, देखा, अनंत। और हम सीमित बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते कि अनंत बुद्धि क्या कल्पना कर सकती है। देखिए, हम ये कभी नहीं कर सकते, समझे। परंतु यदि इसे आत्मा में थाम कर देखेंगे तो आप इसका अनुभव कर सकेंगे। और अब वचन में जाकर आप इसे देखेंगे, पीछे कभी जब संसार की नींव रखने से पहले। अब बाइबल ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना। अब ध्यान पूर्वक सुने, आप में से कुछ लोग कल इसके समाप्त होने पर नहीं होंगे। बाइबल ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया। क्या ये ठीक बात है? वो कब घात किया गया? रचने के समय से पहले। संसार ये है, यदि ये टूटे हुए परमाणुओं से बना है, वहाँ सूर्य से लेकर इसके पहले वो ये था। इसके पहले कि कोई परमाणु सूर्य में टूटता, यदि ये सूर्य की उल्का थी जो कि अरबों खरबों खरबों वर्षों पहले, इसके पहले कोई ज्योति का कण होता, मसीह घात किया गया। जब परमेश्वर का महान मस्तिष्क ने ये बात तय करता है कि ये एक संपूर्ण पूरा परिणाम था, जब परमेश्वर ने कहा ये हो जाए तो ये पूरा हो चुका। यदि सैकड़ों करोड़ों इसे होने में निकल जाए तो जैसे ही उसने ये कहा ये पूरा हो चुका था। और जब मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया, उसी बाइबल ने वही लिखा और कहा कि हमारे नाम पृथ्वी के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए। इसलिए वो व्यक्ति जिसने ये गीत लिखा कि वहाँ महिमा में एक नया नाम लिखा गया, उसका एक अच्छा अर्थ था, परंतु वचन अनुसार नहीं था, समझे। वो नाम महिमा में लिखा गया जब संसार, इसके पहले कि संसार की रचना कभी आरंभ होती, जब मेमना मारा गया, हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए। मैं आपको ये एक छोटा वचन दे दूं, क्या आप एक मिनट रुकेंगे? अब ये मेरे मस्तिष्क में आया है, मैं सोचता हूँ कि मैं इस पर मुड़ सकता हूँ, मैं निश्चित नहीं हूँ। और अब मुझे खेद है कि मैंने आप लोगों को इतनी देर से रोका हुआ है, परंतु मैंने आपको बताया कि ये अर्धरात्रि होगी, ये इतना अधिक खराब नहीं था, परंतु मैं चाहता हूँ कि इसे लूँ, इस पर केवल एक वचन। मेरे साथ रोमियो की पुस्तक को निकालें और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इसे पढ़ें। अब हम इसे देखें, रोमियो, यदि मैं इसे ढूंढ सकूं, लगभग ठीक यहाँ। अब रोमियो 8 निकालें और रोमियो के 8 अध्याय के 28वें पद से आरंभ करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरे साथ प्रार्थना में होते हुए पढ़ें। यहाँ सुने कि अब परमेश्वर ने क्या कहा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, ये आपको देता है, क्या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया और उन्हें पहले से ठहराया भी है, ठीक है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। पृथ्वी के रचने से पहले जब परमेश्वर ने नीचे देखा, अब परमेश्वर अपना कार्यस्थल यानी ऑफिस ऐसे नहीं चलाता कि कहे अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं। देखा, वहाँ कुछ नहीं है। स्मरण रखें, अधार्मिकता, पाप धार्मिकता को विकृत किया गया है। शैतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। क्या ये सब समझते हैं? ये इस कलीसिया की शिक्षा है। शैतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, वो जो परमेश्वर ने रचा है उसे भ्रष्ट कर सकता है। अब भ्रष्टता क्या है? आप में से अधिकतर व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। इसको सुनिए, हम विवाहित लोग हैं और आप विवाहित पुरुष और विवाहित स्त्रियां एक साथ पति पत्नी के समान रह सकते हैं, और वे स्त्रियां ठीक वैसी ही हैं जैसे वे कभी नहीं। जब तक आप अपने पति के साथ स्थिर हैं, आप कुंवारी हैं। ये ठीक बात है। अब ये वैध और कानूनी है, और ये ठीक है, और ये ठीक है, ऐसा करने के लिए परमेश्वर से निर्धारित है। दूसरी स्त्री भी आपकी पत्नी के समान व्यवहार कर सकती है, उसमें से एक के साथ आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, और वही व्यवहार दूसरी स्त्री के साथ आप परमेश्वर के सन्मुख मृत्यु के लिए दोषी हैं। ये क्या है? धार्मिकता भ्रष्ट की गई। देखिए, धार्मिकता भ्रष्ट की गई। अब शैतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, परंतु जो परमेश्वर ने रस दिया है उसे भ्रष्ट कर दिया। झूठ क्या है? क्या सत्य भ्रष्ट किया गया? किसी ने कहा, ओह, ये शनिवार 9 बजे था। हाँ, बिली ब्रनम जेफरसनविले में थे, ठीक है। वहाँ एंथोनी के आलिशान कमरे में शराब पी रहे थे, ये झूठ है। ये क्या था? मैं जेफरसनविले में था, ये सत्य है। ये सत्य झूठ में भ्रष्ट कर दिया गया। देखा मेरा क्या अर्थ है? देखिए, झूठ सही को भ्रष्ट करता है। ये कुछ बताया गया कि मैं अब कहाँ था। यदि ये कहा आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, ठीक है, ये धार्मिकता है, उसने सत्य बताया। मधुशाला में पी रहे थे, एक झूठ भ्रष्ट किया गया। देखिए, सत्य भ्रष्ट किया गया। देखा मेरा क्या अर्थ है? सारा अधर्म धार्मिकता को विकृत किया गया है। मृत्यु, ये क्या है? जीवन विकृत किया गया। बीमारी, स्वास्थ्य भ्रष्ट किया गया। आपको अच्छा मजबूत पुरुष होना चाहिए, ठीक है। यदि आप बीमार से हैं, ये क्या है? आपका स्वास्थ्य भ्रष्ट हो गया है। देखिए, तब यही है इसमें। ये क्या है? आप युवा सुंदर स्त्रियां हुआ करती थीं और मजबूत सुंदर पुरुष, अब आप में झुर्रियां पड़ रही हैं, बूढ़े हो रहे हैं। ये क्या है? जीवन विकृत हो गया। देखिए, फिर से वापस आ रहे हैं, समझे? और इसे वापस आना है। प्रभु का नाम धन्य हो, परमेश्वर ने इसे वापस लाने की प्रतिज्ञा की है। और जितना कि ये निश्चित है, यदि ये है, हम जानते हैं कि ये यहाँ पर है, इसलिए ये ऐसे ही निश्चित है। परमेश्वर इसे फिर वापस लाने को है। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है और शपथ खाई है कि वो ये करेगा, जो कि हमें देता है। अब हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए? अब ध्यान दे, ये चीजें कैसे घटित होती हैं। अब जिन्हें उसने पहले से जाना उसने बुलाया, जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। कब? पृथ्वी के रचने से पहले, पहले कभी जब संसार आरंभ हुआ। अब यदि हम इस पवित्र लेख को ले सकें और इसे वास्तव में इसे धर्मी ठहराया, हम इस पर घंटों प्रचार कर सकते हैं, परंतु हम ये नहीं करना चाहते। परंतु सारा अधर्म जो यहाँ है वो भ्रष्ट की गई धार्मिकता अधार्मिकता में है। यही है जो शैतान करता है। अब जब उस आयु पर आते हैं और जानते हैं कि क्या गलत और सही है, आपको अपनी गलती को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप पाप में जन्मे, अपराध में पले, संसार में झूठ बोलते हुए आए। तब आप वास्तव में काम इच्छा से जन्मे हैं। तब आपको नया जन्म पाने के लिए फिर से जन्म लेना चाहिए कि स्वर्ग में प्रवेश करें, क्योंकि इस प्रकार का जन्म आप यहाँ पाते हैं। आप देखिए, यहाँ की यहोवा विटनेस वाले कितने गलत होंगे, ये सोचते हुए कि नया जन्म शरीर का जी उठना है। देखा आपने, ये नहीं हो सकता, समझे? इसमें कुछ होना चाहिए। आप समय के क्षेत्र में हैं, और केवल वही जो अनंत है कुछ ऐसा है जिसका आरंभ या अंत नहीं है। कोई भी चीज जो अनंत है उसका कभी भी आरंभ नहीं हुआ या इसका कभी भी अंत नहीं होगा, समझे? इसलिए यदि आप परमेश्वर का भाग हैं, आत्मा जो आप में है उसका कभी भी आरंभ नहीं हुआ या उसका कभी भी अंत नहीं होगा, और आप अपनी आत्मा के साथ जो आप में है अनंत हैं, समझे? जैसा कि एगपाल प्रेम है, और तब ये फिलियो प्रेम में आता है, और तब कामुकता प्रेम में। ये घटिया होता जाता है और नीचे चलता चला जाता है, जब तक कि ये गुत्थियों का गठर नहीं हो जाता। क्यों? केवल एक ही मार्ग है। यीशु उसी सीढ़ी से यहाँ नीचे आया कि उठाकर और वापस फिर वही उसी ऊंचे रूप पर ले जाए, निचले रूप से, मृत्यु से जीवन में, बीमारी से स्वास्थ्य में, अधार्मिकता से धार्मिकता में, समझे? वो सबसे ऊंचे से सबसे नीचे, ताकि वो सबसे नम्र को सबसे ऊंचे पर ले आए। वो मैं बन गया ताकि मैं उसके अनुग्रह से वो बन जाए स्वर्गीय सिंहासन की महिमा में। देखिए, मेरा इन बातों से क्या अर्थ है? अब पीछे की ओर देखें। इसके पहले कि संसार आरंभ हुआ, वहाँ उन परमाणुओं में जब परमेश्वर ने देखा कि क्या घटित होने वाला है, उसने वहाँ आपको देखा, उसने मुझे देखा, उसने हर कीट और मक्खी को, हर मेंढक, हर मकोड़े को जो इस पृथ्वी पर होता, उसने उसे तभी देखा। निश्चय ही उसने किया। अब उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने पुत्र को नीचे भेजूंगा और उसे मरने दूंगा। हो सकता है किसी को उस पर तरस आ जाए और ये दुख भरा हुआ मामला होगा, वे संभव है कोई बच जाए। उसने पहले से जाना कि कौन बचेगा। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा मैंने एसाव से घृणा और याकूब से प्रेम किया। इसके पहले किसी को भी ये सिद्ध करने का अवसर होता कि वे क्या थे, क्योंकि वो जानता था कि वे क्या थे। वो जानता था, वो हर बात जानता था। इसके पहले कि आप जन्म लें, वो जानता है कि आप क्या करेंगे। और जब संसार आरंभ हुआ, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बंदूक चलाने वाला हूँ, मुझे बंदूकें पसंद हैं। और किसी महिला ने टेक्सास से, मुझे विश्वास है कि ये टेक्सास है, मेरे लिए 1.22 स्विफ्ट खरीदी है। मैंने हमेशा एक चाही थी, मैं इसे खोजना चाहता था। ये एक शक्तिशाली छोटी निशाने वाली बंदूक है, ये 22 बुलेट 48 ग्रेन बुलेट, और आप इसे संभाल सकते हैं। अब फैक्ट्री कहती है ये ना करें, ये बहुत खतरनाक है, परंतु आप इसकी गोली को 5000 फीट प्रति सेकंड से दाग सकते हैं और फिर भी अपने स्थान पर बनी रहती है। 5000 फुट प्रति सेकंड, जो 1 मील प्रति सेकंड है। दूसरे शब्दों में, एक बाज जो 200 गज की दूरी पर बैठा है, आप उस बाज को मार सकते हैं और देख सकते हैं इसके पहले कि आपको झटका लगे, पंख उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आप दांत कुरेदनी के चपटे भाग को लें और इसे अपने बारूद में घुसा दें और उतना ही उस पर डाल दें, केवल इतना ही आप उसे दांत कुरेदने के ऊपर पकड़ रहे हैं। और आप उस भवन के दूसरे सिर पर बैठे हुए तुअर पर निशाना मार सकते हैं और वह केवल बैठेगा और आपकी ओर देखेगा। क्या बात है, बुलेट विघटित होता है, ये इतनी तेजी गति से जाता है, और इसके और उसके बीच में चादर बिछा दें और आप उसका जरा सा भी विघटित कण चादर पर नहीं पाएंगे। ये बस वापस बदल गया, राख में नहीं, ज्वालामुखी राख में, परंतु ये उससे भी आगे बढ़ गया। ये वापस मूल अम्लों में बदल गया जो उसमें के तांबे और शीशे को बनाता है। ये वापस परिवर्तित हो जाता है जैसे कि ये खरबों वर्षों पहले था। अब ये एक छोटा बुलेट यानी गोली है, 48 दानों की ये गोली, मैं इसे अपने हाथ में पकड़े हूँ और अगले ही क्षण वो उसमें बदल गया जो वो अरबों वर्ष पहले था। यदि संसार अगले करोड़ों वर्ष स्थिर रहा तो ये फिर से वापस गोली के रूप में हो सकता है, वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उसने उसे तांबे में रूपांतरित किया। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया, और तब आप उससे प्रेम करेंगे, तब आप घर जाएंगे और प्रातः थोड़ी देर तक सोएंगे और आप पहले से अधिक उससे प्रेम करेंगे। अब परमेश्वर एक ठेकेदार है, आप इसे कितने जानते हैं कि वो एक बनाने वाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुने। अब परमेश्वर ने पहले, वे कहते हैं, अब हम इसमें एक कालक्रमी ज्ञानी के विचार को लेने जा रहे हैं। परमेश्वर सैकड़ों खरबों वर्षों पहले, जब वो इस संसार को बनाने जा रहा था और उसने बस आरंभ किया, अब उसके पास उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। अब आप ये कहने जा रहे हैं, यदि वो इतना महान है भाई ब्रैनम, तो उसने शैतान को पाप बनाने की अनुमति क्यों दी? भाई, वो इसके पहले कि शैतान इसे उत्पन्न करता, वो जानता था कि वो शैतान होगा। महिमा हो, अब मुझे भक्ति भाव का सा अनुभव हो रहा है। ओ प्रभु, वो इसके पहले कि शैतान की रचना होती, वो शैतान बनेगा, वो जानता था। आप पूछते हैं उसके विषय में क्या है, आप कहते हैं कि उसने क्यों उसे शैतान बनने दिया, ताकि वो परमेश्वर सिद्ध हो सके, इसलिए उसने ये किया। तो फिर क्यों कभी अधार्मिकता होती, क्यों? पहले कौन था, एक बचाने वाला या एक पापी? कौन सा पहले था, एक बचाने वाला? पहले कौन था, एक चंगा करने वाला या एक बीमार व्यक्ति? क्यों एक पापी के होने की अनुमति दी गई? क्योंकि उसका एक गुण बचाने वाला है। यदि कभी कोई पापी ना होता तो वो बचाने वाला करके ना जाना जाता। हालेलुया, वो अपनी महिमा के लिए सब चीजों को बांध सकता है। क्या कुम्हार कह सकता है, या क्या बर्तन कुम्हार से ये कह सकता है कि तूने मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया? चाक के ऊपर कौन है, किसके पास मिट्टी है, उसमें किसके हाथ हैं? पौलुस उसने कहा, ओ मूर्ख मनुष्य, क्या उसने ना कहा उसने फिरौन को इसी कारण खड़ा किया? निश्चय ही वो संसार के पहले से इसे जानता था कि कौन क्या होगा, और उसने पाप को होने दिया ताकि वो एक बचाने वाला हो, उसने बीमारी को होने दिया कि वो एक चंगा करने वाला हो सके, उसने घृणा को होने दिया ताकि वो प्रेम कर सके। निश्चय ही उसने किया, वो परमेश्वर है, ये उसके गुण हैं, और उसके पास कुछ होना चाहिए कि अपने गुणों को प्रकट करे। आप कैसे कभी जान पाते कि कोई रात थी, आप कैसे जान पाते कि कोई कुछ था? यदि सदा दिन का उजियाला ही होता तो आप कैसे जान पाते कि कोई रात्रि थी? रात्रि होती है कि सिद्ध हो जाए, दिन का उजियाला है, निश्चय ही वहाँ है। आमीन। आपने देखा कि उसने क्या किया, परंतु जब उसने पहले, इसके पहले कि पृथ्वी को रचता, इसके पहले कि वो इस पुराने सूर्य को लिया और उसने इसे इस पुराने सितारे के चारों ओर घुमाता, जिस पर अब हम लोग रह रहे हैं, ये पृथ्वी, और उसने इसे सूर्य के द्वारा ढाला और इसे सूर्य के चारों ओर रख दिया। कहता है यहाँ सूर्य है, उसने इसे इस ओर ढाला और इसे वो सैकड़ों खरबों वर्ष के लिए वहाँ रख टांग दिया। वो क्या बना रहा था? कुछ गैसें। वो इस ओर आ गया और उसने कुछ और बनाया। वो वहाँ क्या बना रहा था? कुछ पोटाश। वो इस ओर आ गया, वो यहाँ क्या कर रहा है? कुछ कैल्शियम बना रहा है। वो क्या कर रहा था? वो आपको और मुझे बना रहा था। वो क्या कर रहा था? वो एक ठेकेदार के समान अपने सारे 2/4 का और उसका 2/8 अपनी सीमाएं बिछा रहा है। वो जानता है कि वो कितने भवन निर्माण करने जा रहा है। और हम पृथ्वी के 16 तत्वों से मिलकर बने हैं और वो हम सबको बना रहा था, और इसके पहले कि संसार आता हमें वहाँ रख रहा था। और उस समय ये आयताकार हो सकता है, मैं नहीं जानता ये क्या था। वो क्या बना रहा था? सोना, तांबा और पीतल और पानी और वे सारी चीजें। वो एक ठेकेदार है, वो बनाने वाला। वहाँ वो हर चीज को रख रहा था, सब चीजों को काटा और रूप दिया। और जब उसने ये सब बना लिया तो ये केवल एक बड़ा ज्वालामुखी फटना था, और उसने उन पुराने ज्वालामुखी रूपी में से उसे सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक चिंतन करने दिया ताकि कुछ कैल्शियम बनाए। ये क्या है? ये आपका भाग है। और इसके पहले कि इस पृथ्वी पर छोटा सा जीवन होता, हमारी देहें यहाँ पड़ी थीं। हालेलुया। इसके पहले कि नमी की एक बूंद इस पृथ्वी पर आती, हम यहाँ पर पड़े हुए थे। जब आदम अदन वाटिका में इधर उधर घूमा, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ था। आमीन। जी हाँ श्रीमान, महिमा हो महिमा। जब सरापा भोर के तारे एक साथ मिलकर गाते और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाते, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ था। जीवन की श्वास की प्रतीक्षा कर रहा था कि आए, मैं यहाँ पर था। उसने मुझे यहाँ बनाया और मेरी देह यहाँ पर पड़ी हुई थी। जी हाँ श्रीमान, ये वो नहीं था जहाँ से आप आए थे। यहाँ पर कैसे पहुँचे? परमेश्वर ने इसे यहाँ पर रखा, परमेश्वर ने इसे बनाया। हम 16 तत्वों से बने हैं, पेट्रोलियम, पोटाश और कॉस्मिक प्रकाश और या क्या कुछ। देखिए, हम यहाँ पर पड़े थे। तब क्या घटित हुआ? तब पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने कहा, हम इसे प्रतीकों में लेंगे। अब तुम जाओ और तुम जाकर उस संसार से प्रेम करो, क्योंकि मैं प्रेम हूँ और तुम मेरा उत्पाद हो, इसलिए अब जाकर संसार से प्रेम करो। और हम सोचते हैं कि वो महान पवित्र आत्मा वहाँ पर आया वैसे ही अब चित्र के रूप में। ये इस प्रकार से नहीं था, निसंदेह है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक ही है, एक ही उद्देश्य, वही एक उद्देश्य। व्यक्ति, मुझे क्षमा करें। और ऐसा कहें कि उसने अपने पंखों को पृथ्वी पर फैलाया, उसने सेकर संतान उत्पन्न करनी आरंभ कर दी। ये सेहना क्या है? जैसे मुर्गी अपने बच्चों के लिए गटगू, प्रेम करना, क्वे क्वे करना। ओ जीवन, इधर आ, वो चिल्लाया। उसने चारों ओर देखा। मैं इस पृथ्वी पर सुंदरता चाहता हूँ, उजियाला आ जाए। पवित्र आत्मा मंडराता है। और जब उसने किया, मैं वहाँ पहाड़ पर से जल की धारा को आते हुए देख रहा हूँ। वहाँ कुछ कैल्शियम आता है और नीचे आकर पोटाश के साथ मिल जाता है। ये किसमें सिमट रहा है? जीवन, आ जा। चट्टान के नीचे से एक ईस्टर का छोटा फूल अपने सिर को उठाता है। पिता, यहाँ आइए, इसे देखिए, ये अच्छा दिखाई पड़ता है, बस जन्माता रहे। उसने फूलों को जन्माया, उसने हरियाली को उगाया, वो जानवरों के जीवन को ले आया, उसने चिड़ियाएं मिट्टी से उड़ी। और कुछ समय पश्चात एक पुरुष और स्त्री आई, एक पुरुष आया, और वो पुरुष और स्त्री दोनों था, दो लिंगी नहीं, इस समय उसके अंदर है। वहाँ एक नारी स्वभाव की आत्मा थी। जब आप एक पुरुष को लेते हैं जो कि इतना जनखा या लजालू होता है, वो ठीक हो सकता है, ठीक संतुलन में है, परंतु कुछ गड़बड़ है। और जब आप एक महिला को लेते हैं, अपने बाल कटाना चाहती है और सब कुछ पहनती है और वहाँ बाहर जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करती है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ गड़बड़ है। एक स्त्री में नारी की आत्मा है और पुरुष में नर की। हम ये जानते हैं और आप ये जानते हैं। क्या वो महिला ठीक दिखाई पड़ती है जो पुरुषों के समान व्यवहार करना चाहती है? क्यों? एक बार मैं बैठा हुआ था और मैं एक शिकारी रक्षक था, और मैं बस में बैठा और वहाँ गया, और मैंने अपना हाथ स्त्री के पैर पर मारा। मुझे नहीं मालूम था कि वो स्त्री है। उसने वेल्डर की टोपी पहन रखी थी और इस प्रकार का बड़ा धूप का चश्मा, और मैं वहाँ पीछे बैठा था और वो कुछ बता रही थी जो कि कुछ हो चुका था। उसने कहा, आप जानते हैं, और उसने कहा, और बीती रात्रि सख्सी दिखाई पड़ रही थी, सिगरेट पी रही थी। उसने कहा, पिछली रात्रि मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति उस चीज पर से फिसल गया, और कहा, ओ वहाँ से फिसलता हुआ नीचे आया। मैं अपने जीवन में इतना कभी नहीं हंसी। और आप देखिए, मैं इस प्रकार से हंस रहा था। मैंने कहा, लड़के, वो एक था क्या? नहीं था। इस प्रकार से वहाँ बैठे हुए बात कर रहा था। यदि वो इस चीज को उतारकर अपने सिर से न हिलाती और उसकी मुखाकृति थी कि वो स्त्री थी। मैंने अपने को जीवन में इतना छोटा कभी अनुभव नहीं किया। मैंने कहा, क्या आप महिला हैं? उसने कहा, क्यों, निश्चय ही। मैंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अब ये सत्य था। उस दिन मैंने एक विज्ञापन देखा, मैं रोमांचित हो गया। एक वहाँ बड़ा विज्ञापन था जिसमें कहा गया था कि महिलाएं कपड़े पहनने को तैयार हैं। मैंने सोचा इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो, समझे। परंतु मालूम पड़ा कि ये एक प्रकार का वस्त्र था जो पहले ही बनाया जा चुका था, देखा आपने। मैंने सोचा कि वे वास्तव में कपड़े पहनने जा रही हैं। मैंने वास्तव में सोचा, उसमें कहा गया था कि महिलाएं कपड़े पहनने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा, उनके लिए परमेश्वर की महिमा हो, ये तो अच्छा है कि ये ठीक बात है, निश्चय ही मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परंतु देखिए कि ये एक प्रकार की वेशभूषा थी जो कि पहले ही तैयार थी, कुछ था जो कि कुछ अजीब था। क्या इस देश में ऐसा नहीं होगा? ठीक है। तब जब आदम आया और आदम अकेला दिखाई पड़ता था, इसलिए उसने उसकी एक ओर से पसली निकाली और हवा बना दी, उसमें से एक उप उत्पाद, और उसने बनाया, उसने स्त्री वाली आत्मा आदम में से निकाल ली, प्रेम की आत्मा, नारीत्व, दयालु, सज्जन, और उसने नर वाली आत्मा आदम में छोड़ दी। अब यदि कुछ भिन्न है तो कहीं पर मिलावट है। अब तब वे दो एक थे, और इसलिए हम एक छोटा सा नाटक इसको समाप्त करने से पहले लेते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ ये आदम हवा का हाथ पकड़ता है और वे चले जाते हैं। मुझे ये कहानी अच्छी लगती है। और वे चले गए। आप देखिए, हवा ने कहा, ओह प्रिय, तुम्हारा अर्थ तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने उसका नाम रखा है। अच्छा, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये घोड़ा कहलाया है। ओह, वो क्या है? वो गाय है। आपने इसका नाम रखा है? ओह हाँ। आप उसे क्या कहते हैं? वे जो अपने सर झुकाए एक साथ बैठे हैं, वो लव बर्ड है। ओह, मैं देखती हूँ। और वो इस प्रकार से चलते जाते हैं। और यहाँ ये क्या है? मैं उसे ये कहता हूँ, और ये यहाँ है। और ओह, मैं देखता हूँ, ओह ये सुंदर है। और सिंह गरजता है, उसे तुम क्या कहते हो? वो सिंह है। ये क्या है? ये शेर है। और सब इस प्रकार से, ओह मैं देखता हूँ कि बिल्ली के समान आसपास म्याऊं म्याऊं कर रहा है। इस प्रकार से थोड़ी देर के पश्चात वो आसपास देखती है, वो कहती है, प्रिय देखो, वहाँ सूर्य नीचे जा रहा है, ये आराधनालय में जाने का समय है। आप जानते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो कुछ होता है, आप आराधना करना चाहते हैं। यदि आप उस रात्रि आराधनालय न जाएं, तो आप कमरे में जाकर बाइबल पढ़ना पसंद करते हैं। कितने ऐसा करना चाहते हैं? अपने आप में अकेले में बात करें। देखिए, ऐसा करना मनुष्य में होता है, आपको ये करना चाहिए। आराधनालय में जाने का समय। अब उन्होंने कभी नहीं कहा, अब जरा एक मिनट रुको, जोन्स असेंबली से है और हम वहाँ से नहीं। ये इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं था तब। इसलिए बस वे गए, उनके पास आराधनालय नहीं था इस प्रकार की अच्छी कुर्सी बैठने के लिए। वे बस जंगल के बड़े आराधनालय में गए और घुटने टेक दिए, और वो प्रकाश इस प्रकार से वहाँ झाड़ी के ऊपर सामने था। मैं वहाँ आवाज को बोलते हुए सुनता हूँ और कहती है, क्या मेरे बालक स्वयं में इस पृथ्वी पर आनंदित रहे वो दिन जो परमेश्वर ने तुझे दिया? हाँ प्रभु, हम आज आनंदित रहे, है ना प्रिय? हाँ हाँ प्रिय, हम रहे प्रभु, निश्चय हम तेरी सराहना करते हैं। अब मैं सोने के लिए लेटता हूँ, समझे। और वो अपनी बड़ी सी बांह पसारता है, और वो उसकी बांह पर लेटती है, और वो शेर और सिंह को लिटा देता है, और चीज शांति से सो जाती है। इस प्रकार से परमेश्वर नीचे उतर कर आता है, और वो एक स्वर्गदूतों का झुंड नीचे लाता है, गैब्रियल, उसकी स्वर्गीय रचना। इसलिए वे नीचे आते हैं, और वे उसके शयन कक्ष में दबे पांव आते हैं। देखिए, चारों ओर देखते हैं। जिब्राइल कहता है, पिता यहाँ कर देखो, वो यहाँ पर है, यहाँ आपके बालक लेटे हुए हैं। आप में से कितने पलंग के पास कभी गए? आप में से कुछ माताएं और आप और पिता एक साथ, और छोटे लड़के लड़की को देखा, और आपने एक दूसरे को स्मरण कराया, क्या इस ओर से या उस ओर से तुम्हारे समान नहीं लग रहा? क्या आपने कभी ऐसा किया? क्यों, मैं बहुत बार जाकर मैडा से कहता हूँ, जोसेफ के विषय में कहता हूँ। वो कहती है, बिल का माथा तुम्हारे समान ऊंचा है। हाँ, परंतु मैडा, उसकी आंखें तुम्हारे समान बड़ी बड़ी हैं। क्यों? वो आपके उत्पाद का भाग है, ये हमारे मिलन का उत्पाद है। अब और पिता ने कहा, इसके विषय में कह सकते हैं, आप जानते हैं। और जब्राइल ने कहा कि देखिए, वो ठीक आपके समान दिखता है, ऐसे ही परमेश्वर देखता है, अपनी ओर देखिए, ऐसे ही परमेश्वर दिखाई देता है, वो आपके समान दिखाई पड़ता है, आप उसकी संतान हैं, कितने ये जानते हैं, समझे। अब देखिए, हमारे जीवन का सबसे छोटा रूप क्या है? मेंढक। सबसे ऊंची प्रकार का जीवन क्या है? मनुष्य, निश्चय ही। और सबसे अच्छा प्रकार क्या है? वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, मेंढक से ये और वहाँ तक और चिड़ियों तक, और इस प्रकार से ऊंचे प्रकार का जीवन, जब तक कि ये उच्चतम तक नहीं आ जाता, तब ये परमेश्वर का स्वरूप बनता था। और आप वहीं पर हैं, और स्त्री परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाई गई, परंतु पुरुष के स्वरूप में, समानता में, समझे? अब वहाँ वे हैं, और परमेश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ वे दिखाई पड़ते हैं, वे सुंदर हैं। भाई वो क्या था? उन्हें कभी भी मरना नहीं था, वो बस एक थोड़ा मुट्ठी भर कैल्शियम था, पहले पोटाश और हर चीज इस प्रकार से आरंभ हुई। क्या ये सुंदर नहीं है? परंतु पाप ने आकर चित्र को बिगाड़ दिया। अब क्या परमेश्वर ने इसे क्या करने की अनुमति दी? उसने क्यों, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इसकी अनुमति दी? उसने इसलिए अनुमति दी ताकि वो सिद्ध कर सके कि वो बचाने वाला था। उसने ये कर दिया, उसने बीमारी को ऐसा होने दिया कि ये सिद्ध कर सकता है कि वो चंगा करने वाला था। उसने मृत्यु को ऐसा घटित होने दिया कि सिद्ध करे कि वो जीवन था, समझे? उसने सब बुरी बातों को घटित इसलिए होने दिया कि सिद्ध करे कि वो भला था, जो कि वो था। हम आप गाने के विषय में बात करते हैं, छुटकारे की कहानी, क्यों भाई? जब यीशु आता है, ये आराधनालय यहाँ पृथ्वी के किनारे पर खड़ा रहेगा और छुटकारे की कहानियों को गाएगा, जब स्वर्गदूत अपने सिरों को झुकाए हुए होंगे, ये न जानते हुए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। वे कभी भी नहीं खोए, वे नहीं जानते कि हम कहाँ से होकर निकल रहे हैं। हम जानते हैं खोने और फिर मिल जाने का क्या अर्थ होता है। ओ, क्या हम उसकी महिमा को चिल्ला सकते हैं? वो उनके लिए बचाने वाला नहीं है, उन्हें बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उनके लिए चंगा करने वाला नहीं था, नहीं महिमा हो, वो नहीं था, वो उनके लिए जीवन नहीं था, निश्चय ही नहीं। वे कभी भी पाप और अधर्म में नहीं मरे थे, हम थे परंतु जीवित किए गए, और हम यहाँ पर हैं। हम अपने ताजों को उतार कर क्या कहेंगे कि तू ही आदर के योग्य है, अमुक अमुक। ओ नहीं 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 नहीं, सारी महिमा उसी को मिले। यही है, आप इसी स्थान में हैं। तब हम कहानी बताएंगे कि हम कैसे जयवंत हुए, हम इसे धीरे धीरे करके समझेंगे। तब वहाँ पर क्या हुआ, तब क्या घटित हुआ, तब क्या परमेश्वर ने बस यूं ही कह दिया, अच्छा तो मैं अपने इस पोटाश और कैल्शियम को नष्ट कर दूंगा, ये सब नष्ट हो गया? नहीं नहीं, वो जानता था कि इसे इसी मार्ग से जाना था। अब अपवित्र आत्मा ने मुझे वही बनाया जो मैं हूँ, और मैं खाना खाता हूँ और इसे अपने शरीर में वापस डालता हूँ, और जो मैं हूँ उसे बनाता हूँ। अब तब भी मैं एक रूप में बनाया गया था। हर चित्र को जिसे परमेश्वर ने देखा पृथ्वी के रचने से पहले परिपक्व और घटित हुई, समझे? ये स्त्री में से निकल कर आया, जैसा कि उसने कहा ये होगा। अगली बार ये परमेश्वर से निकल कर आता है, उस समय ये स्त्री में से निकल कर आया, इस बार ये पुरुष में से निकल कर आया, समझे? उस समय काम इच्छा से आया, इस बार ये परमेश्वर के बोले गए वचन के द्वारा आया, समझे? और वहाँ अब मुझे कोई चीज हानि नहीं पहुँचा सकती, नहीं श्रीमान, वहाँ कुछ भी हमें हानि नहीं पहुँचा सकता। जैसा कि पौलुस ने कहा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी मृत्यु, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह में है अलग नहीं कर सकता, कोई भी चीज नहीं है जो अलग कर सके। जैसे कि मैंने छोटी सी कहानी बताई, मेरे पास 5 ही बाल बच्चे हैं कि मैं पूरी तरह से गंजा हो जाऊं, और कुछ समय पहले मैं उन थोड़ों में कंघी चला रहा था। मेरी पत्नी ने कहा, बिली तुम तो लगभग पूरे ही गंजे हो गए हो। मैंने कहा, परंतु मैंने उनमें से एक भी नहीं खोया। वो बोली, वे कहाँ हैं? मैंने कहा, इससे पहले कि वो मुझे मिलते वे कहाँ थे? देखा, इससे पहले कि मैं उन्हें पाता वे कहाँ थे? अब से 100 वर्ष पहले एक समय था कि वो बाल यहाँ नहीं थे, परंतु वे यहाँ मिट्टी में थे। क्या ये ठीक बात है? तब लगभग 50 वर्ष पहले वे मेरे सिर पर उगने लगे। वे कहाँ से आए? मिट्टी में से। और अब वे वही वापस जा रहे हैं जहाँ से वे आए थे। क्या ये ठीक बात है? वे नहीं थे, वे आ गए, और अब वे नहीं हैं। ये क्या है? जो वे हैं उन्हें किसने बनाया? परमेश्वर ने। वो वही है, उसने एक चित्र को रंगा, और उसी प्रकार मैं उसे चाहता हूँ। ओ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? तेरी जय कहाँ है? एक दिन आप मुझे यहाँ से जमीन में गाड़ सकते हैं, मैं नहीं जानता, परंतु भाई मैं मरूंगा नहीं, मैं आपको ये बता दूँ। नहीं श्रीमान, ओ हम जी उठेंगे, हालेलुया, हम जी उठेंगे। उस पुनरुत्थान की सुबह जब मृत्यु की सीमाएं टूट जाएंगी, हम जी उठेंगे, हालेलुया, हम उठ जाएंगे। मुझे उठने से कोई नहीं रोक सकता, नरक में इतने शैतान नहीं हैं जो मुझे जी उठने से रोक सकें। वहाँ कोई चीज इतनी पर्याप्त नहीं है कि मुझे उठने से रोके। मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास जोई है, परमेश्वर का अनंत जीवन जो यहाँ विश्राम कर रहा है। ये पुराना शरीर वहाँ से आया, और परमेश्वर ने मुझे मिट्टी में से जन्माया, और यदि वो जिसने मुझे मिट्टी में से निकाला जब मेरी उम्र हो गई, अब हर बार जब मैं आराधनालय के घंटों को सुनता हूँ, कोई चीज मुझसे बोलेगी, एक छोटी सी आवाज। एक स्वर्गदूत मुझसे झाड़ी में से बोला, कहा तुम कभी भी ना तो शराब पीना या धूम्रपान करना, मेरे पास तुम्हारे करने के लिए एक कार्य है, अपनी देह को गंदा ना करना या स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमना और बातें, मेरे पास तुम्हारे करने के लिए कार्य है जब तू बड़ा हो जाएगा। आप कौन हैं इस विषय में तू बाद में जानेगा। उस समय पश्चात वो यहाँ आता है, वो वहाँ सामने बपतिस्मे में ऊपर ठहर जाता है, वो स्वयं को दर्शाता है, वो स्वयं की घोषणा करता है, वो उत्तर देता है, मैं उसे सामने हर जगह खड़ा देखता हूँ, हर एक हाथ पर। आप कैसे करने जा रहे हैं? यदि उसने मुझे मेरी बिना अपनी इच्छा के बनाया है, मैं वहाँ कभी वापस नहीं गया और कहा अब चार्ली ब्रैनम तुम एला हार्वी से विवाह करो और मुझे मिट्टी में से बाहर निकालो। नहीं श्रीमान, मेरे पास कभी भी कोई विकल्प नहीं था, परमेश्वर ने ये किया। और यदि उसने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ बिना किसी चुनाव अधिकार के, तो कितना और अधिक जब वो पवित्र आत्मा मुझ पर विचार मग्न हो रहा है और मैं कहता हूँ कि हाँ प्रभु, आप मेरे रचने वाले हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको अपना बचाने वाला स्वीकार करता हूँ, आप मुझे कैसे मिट्टी में पड़ा रहने देंगे? भाई बस इसे नहीं कर सकता था, बस नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कभी इस कैल्शियम या पोटेशियम का टुकड़ा या जो कुछ भी कभी नहीं बनाया जो कभी व्यर्थ चला गया हो। सब जो पिता ने मुझे पृथ्वी के रचने से पहले मुझे दिया मेरे पास आएगा। ओ, मुझे अब चिल्लाने की अनुभूति हो रही है। सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा और उनमें से कोई भी ना खोएगा, परंतु मैं उसे पुनरुत्थान के दिन फिर जिला उठा खड़ा करूंगा। मैंने उसकी पुकार सुनी है और मैं उसके पास आया। वे कैसे मुझे पृथ्वी की मिट्टी में रोके रह सकते हैं? संसार में इतना जोरदार अंत्येष्टि करने वाला नहीं जो कि बेल जैसे मेरे चेहरे पर मिट्टी थपथपाए कि मुझे पृथ्वी के मिट्टी के तले सदा रख सके। मैं किसी दिन उठूंगा और उसकी समानता में खड़ा होऊंगा, उसके लहू में धुला हुआ, उसकी आत्मा से जन्म पाया हुआ। हालेलुया। आप अपने सारे नामधारियों को ले लें, लेना चाहें, मैं यीशु को लूंगा। आमीन। एक बीमा करने वाला मेरे पास आया, विल्बर साइडर, मेरा एक अच्छा मित्र। उसने कहा, बिली मैं तुम्हें एक बीमा पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास पहले से ही है। मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा जैसे कि कह रही हो तुम लड़के से क्या झूठ बोल रहे हो। बोला, तुम्हारा बीमा हो गया? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। कहा कि कौन सी कंपनी से है, क्या है? मैंने कहा, आशीषित विश्वास, यीशु मेरा है। ओ दिव्य महिमा का क्या ही पूर्व स्वाद है। उद्धार का वारिस, परमेश्वर का खरीदा हुआ, उसकी आत्मा से जन्मा हुआ, उसके लहू से धुला हुआ। उसने कहा, बिली ये अच्छा है परंतु इससे तुम कब्रिस्तान में नहीं जाओगे। परंतु मैंने कहा, ये मुझे बाहर ले आएगा। हालेलुया, मुझे वहाँ जाने की चिंता नहीं है, बाहर निकलने की है। ये मुझे बताता है कि मेरा बीमा हो गया। मैं उन सबको ले आऊंगा जो पिता ने मुझे दिया है, वे मेरे हैं। मैं चिंता नहीं करता कि मेरे पिता ने क्या किया है, मेरी माँ ने क्या किया है, कुछ भी क्या था। सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, जब तक पिता ही उसे न खींच ले कोई मनुष्य नहीं आ सकता। हालेलुया। उसने उनको क्यों जाना? मैं उन्हें पृथ्वी के रचने से पहले से जानता हूँ। जब मैंने मेमना बलि किया, मैं उसे उसके साथ बलिदान किया। आमीन। मैंने कलीसिया को पहले से ठहराया है। किसने पहले से ठहराया है? कलीसिया। आप कैसे कलीसिया में आते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा, हमने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। वो पृथ्वी के रचने से पहले जानता था कि हम वहाँ पर होंगे। जिन्हें उसने पहले से जाना उन्हें बुलाया, जिन्हें उसने बुलाया उसने उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया वो पहले ही महिमा दे चुका। परमेश्वर की पुस्तक में उसने ये कर दिया, कहा वो मुझे ठीक वहाँ मिलेगा। नरक के सारे शैतान उसे कहीं और से रोक सकते हैं, परंतु उसे वहाँ आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर पहले ही ऐसा कह चुका है और ये तय हो गया। यदि सैकड़ों अरबों वर्ष पहले जब कभी संसार बना था, भोर के तारों ने संग एक साथ गाया और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए, क्योंकि वहाँ पृथ्वी के रचने से पहले, देखिए पृथ्वी के रचने से पहले वे स्वर्गदूत और हर चीज आनंदित थे, इस विषय में चिल्ला रहे थे, इसके पहले कि पृथ्वी रची जाती, तो फिर शैतान कैसे मुझे कभी भी पृथ्वी की मिट्टी में रोके रख सकता है? इसे नहीं कर सकता। आप ठीक हैं। आइए इस लोकतंत्र के समय को देखें, यहाँ मेरे पास है 11 बजे तक, ये 20 मिनट, ये केवल 20 मिनट 10 तक है, क्या ये ठीक है भाई वुड? ये ठीक है, 10 बजने में 20 मिनट, हर कोई आनंदित है। आप इस प्रकार के पुराने गानों को पसंद करते हैं? एक पुराना वाला हुआ करता था जिसे हम गाया करते थे, अनुग्रह और दया ने मुझे ढूंढ लिया, वहाँ भोर का तारा चमका, कुछ ऐसा सा। बहन ग्रेटी, वो क्या था? आइए देखें कैसे। भाई नेविल, ये क्या है? देखिए कुछ, अनुग्रह और दया ने मुझे ढूंढ लिया, वहाँ चमकीला भोर का तारा दिखाई दिया, ये मेरे आस पास रहता है। हाँ हाँ, क्रूस पर। बहन इस पर स्वर दें। ये क्रूस के पास, यहाँ आ जाएं। ओ, मुझे ये पसंद है। कितने इन पुराने प्रेरणा युक्त गानों को पसंद करते हैं आप। अपनी पुरानी उछल कूद को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बुगी बुगी आप चाहें तो मुझे ये दे दे। यहाँ जहाँ अनुग्रह और दया ने मुझे ढूंढा, यही है। ठीक है, अब इसे गाएं। कितना सुंदर। इस पर सोचिए, क्या होता यदि कोई बचाने वाला नहीं होता? क्या होता यदि हमारे पास ये वचन ना होता? क्या होता यदि वो आपको ना बुलाता? क्या होता यदि उसने पहले से ना जाना होता आपको, और आप आज रात्रि इस संसार में होते? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? सुबह की सभाओं को ना भूले, अब 9:30 बजे। अब सोते के पास स्थान है, इस पर स्वर दें। ये पुराना अच्छा गीत, सोते के पास स्थान है, कितने ये जानते हैं? स्थान स्थान, हाँ वहाँ सोते पर स्थान है। और अब जब आप इसे करते हैं, वास्तव में शांत होकर अपने पास वाले भाई से हाथ मिलाएं। आप जानते हैं कि इस समय सारे मेथोडिस्ट के लिए स्थान है, बैप्टिस्टों के लिए वहाँ स्थान है, वहाँ पेंटेकोस्टलों के लिए स्थान है, अब हम सब के लिए वहाँ स्थान है, उस सोते के पास। कितने इस पुराने गीत को जानते हैं? और निश्चय ही आप जानते हैं। अब आप में से कुछ पुराने, एक पुराना अच्छा केंटकी का गीत है। और अब मेरे पास आपके लिए छोटा सा आश्चर्य है। अगले सप्ताह सभाओं में आराधनालय के दूसरे छोर पर नए संदेश और पुस्तकें बिक्री के लिए होंगे, टेप और हर चीज और सब अच्छे साहित्यिक रूप में। वहाँ पीछे के एक कमरे में एक मेज होगी और साहित्य, नए उपदेश और कुछ अच्छी किताबें जो कि मूल रूप से नई पुस्तकों में नए संस्करण भवन के अंतिम छोर पर सुसज्जित होंगी इस अगले बुधवार रात्रि। और हम प्रभु में एक अच्छे समय की आशा कर रहे हैं। अब प्रार्थना के लिए आएं। अब अपने बीमारों और पीड़ितों को बुला लें, उन्हें चिट्ठी लिखकर यहां बुला लें और बस हम करेंगे, परमेश्वर सामर्थ्य में कार्य करेगा। हम यहां हैं और जानते हैं कि अब वो इसे करेगा। अब मैं प्रत्येक के पास जा चुका हूं जिन्हें मैं जानता था कि थोड़ा सा कुछ ले लें यदि कोई चीज अब ठीक ना हो। आपको याद है मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हम उसे ठीक करने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप जानते हैं बहुत सी विभिन्न प्रकार की आत्माएं यहां हैं, इससे जो वहां थीं, समझे ये ठीक बात है। अब अधिक न घुटने दें। मैं आपको यीशु मसीह के सामने चेतावनी देता हूं, इसे न छूटने दें। ठीक इसके साथ बने रहें। देखिए हर चीज को सीधा कर लें और उसी पर चलें। आप भाई हैं, ये आपके भाई या बहन कभी भी गलत नहीं करते। ये शैतान की आत्मा उनमें आ जाती है। देखिए वो इधर उधर घूमता है और भाई या बहन के लिए दुखी होता है और जानता है कि बीच में ये शैतान है। अब इस बात के लिए आपकी कोई भावना हो तो आप उसे एकदम से निकाल दें। आप देखिए क्योंकि ये आपको दूषित कर देगा। हाँ ये कर देगा, इसलिए इससे अलग रहें। बस स्मरण रखें, कितनों को ये पुराना विसर्जन का गीत याद है, यीशु का नाम अपने साथ लो, दुख और शोक का बालक, ये आपको आनंद और शांति देगा। जहाँ कहीं आप जाएं, इसे ले जाएं। भाई जेफरी और आप बहन जेफरी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रुक सकते हैं, और लड़के और वे सब, और तब यीशु के नाम पर झुकते हैं, उसके कदमों पर गिरकर दंडवत करते हैं। ओ प्रभु, स्वर्ग में राजाओं का राजा, हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए। यीशु का नाम अपने साथ लें, आज ये ढाल है, ले लें। ओ जब परीक्षा पास आए तब पवित्र नाम को प्रार्थना में लें। ओ मुझे ये अच्छा लगता है, वो आश्चर्यजनक नाम यीशु का। अब हम एक साथ खड़े हो जाएं जबकि हम गाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा भिन्न है। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं और वास्तव में शांति से अपना एक हाथ उठाएं, कहें अपने निरंतर झुके हुए सिरों के साथ हम कहते हैं।